வியாசம் வசிஷ்டநப்தாரம் சக்தே பௌத்ரமகல்மஷம் பராசராத்மஜம் வந்தே சுகதாதம் தபோநிதிம். ராஜா பரீட்சித் ने पूछा कि बलराम जी का और कोई विशेष चरित्र सुनाइए. सुखदेव जी महाराज सुना तो पहले बलराम जी का ही चरित्र थे. एक तो बलराम जी के सामने रहते हुए लीला हुई, एक बलराम जी के परोक्ष की लीला थी. पौंडरक का वध हुआ, ये बलराम जी के परोक्ष की लीला थी. बात याद आ गई तो अब सुखदेव जी महाराज पूछने पर उनकी दो विशेष लीला सुनाते हैं. एक लीला है बलराम जी के शरीर बल की लीला और एक लीला है उनकी बुद्धि बल की लीला. कहते हैं कि द्विविध नाम का बानर था, वो नरकासुर का मित्र था, भगवान श्री कृष्ण का विरोधी था. ये नरकासुर है, वो भौमासुरी नरकासुर है. तो कहते हैं जो को ये मेंद का भाई था, सुग्रीव का मंत्री था, किसी जमाने में राम जी के पक्ष का था, कृष्ण अवतार में आते ही उनसे विरोध हो लिया. नाम भी है द्विविध. आजकल द्विविध बहुत मिलते हैं, दोनों तरफ की बात करने वाले हैं. इधर भी बोल देंगे, उधर भी बोल देंगे, इधर भी करें, उधर भी करें. ये इधर उधर करते हैं, वो द्विविध बानर होते हैं. रामावतार में राम जी के पक्ष में हो गया, कृष्णावतार में कृष्ण से झगड़ा करने लगे. उसको पता चला कि बलराम जी अभी गोकुल में आए हुए हैं, तो वो गोकुल पहुंच गया. उसको तो यदुवंशियों का नाश करना था, कृष्ण भगवान के सामने नहीं जा सका. रामावतार में एक बार लक्ष्मण जी ने उसको खूब फटकार भी लगाई थी. तो लक्ष्मण जी तो बन गए बलराम जी, और द्विविध था ही. बलराम जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उसी वृक्ष के ऊपर गया. बलराम जी के साथ में बहुत से गोपियां बैठी हुई थी, वहां पर ये पहुंचा और बहुत बंदरों के समान चंचलता करने लगा. देखो ये बलराम जी की रास लीला में बात आई है, केवल कृष्ण की रास लीला में ही बाधा नहीं हुई. क्यों? कि कृष्ण भगवान ने उस रास लीला में सबका बंधन कर दिया. ब्रह्मा जी को क्या, इंद्रादि देवताओं को क्या, यज्ञ आदि कर्मों को क्या, सब पर भगवान ने विजय प्राप्त की थी. इसलिए उसका प्रभाव कुछ अलग ही था. दूसरी बात यह है कि भाई शंखचूड़ के समय में भगवान मणि लेकर आए थे ना, तो भगवान ने मणि दे दी बलराम जी को. बलराम जी ने वो मणि ले ली. रास लीला में तो त्याग होता है, त्याग होता है, वहां प्रेम होता है. और इस रास लीला में द्वेष हो गया, द्विविध नाम का बानर था उससे द्वेष हो गया. बलराम जी महाराज ने द्विविध बानर का सिर फोड़ दिया मुक्के से, और द्विविध बानर का शरीर चला गया. उसके मरने के बाद देवता लोग बहुत खुश हुए, दुंदुभियां बजाने लगे. इसलिए खुश हो गए कि ये ऐसा, अब इसको कौन मारे बताओ. देवता भी उसको कैसे मारेंगे, रामावतार में वो बड़ा काम किया। मनुष्य भी एक काम अच्छा करके दूसरा काम खराब करता है तो एक समस्या पैदा होती है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, अच्छा काम कर लिया तो और सावधान, अब कभी बुरा काम न हो जाए। सुखदेव जी महाराज दूसरी कथा सुनाते हैं जो बड़ी बुद्धिमानी कथा बलराम जी की। एक बार की बात है, भगवान का कृष्ण का पुत्र था सांब, जाम्बवती का बेटा, वो हस्तिनापुर चला गया और वहां दुर्योधन की कन्या थी लक्ष्मणा, उसको स्वयंवर में उसने ले लिया, हर लिया स्वयंवर में। फिर कई लोगों ने मिल करके, कर्ण ने, शल ने, भूरी ने, यज्ञ केतु ने, दुर्योधन आदि ने, सब ने मिल करके उसको बांध दिया। अब एक योद्धा है तो एक योद्धा लड़ना चाहिए, पर ये पांच पांच योद्धा मिल करके उसको जो है घेर लिए और घेर करके उसको जेल खाने में डाल दिया। वो बेचारा अकेला था, क्या करता, लड़ा तो खूब, चली नहीं। इधर नारद जी महाराज द्वारिका में पहुंचे, भगवान से कहा कि देखो महाराज क्या बताए, कि बता दीजिए, कुछ बताने के लिए आए हो आप, और तो कोई आपका काम है नहीं, कि बतावे क्या, आपका एक लड़का दुर्योधन के कैद खाने में, कभी आपका पोता खिसक जाता है तो कभी लड़का खिसक जाता है, सबको अब हमें इस रखवाली करनी पड़ती है। कहां गया महाराज, कि दुर्योधन के वहां। अच्छा चलो बलराम जी, अपन चले हस्तिनापुर पर चढ़ाई करें। तो बलराम जी महाराज ने कहा नहीं, तुम रहने दो कृष्ण, मैं ही चला जाता हूं, दुर्योधन मेरा शिष्य है, उसको मैं समझा दे के ले आऊंगा। बलराम जी महाराज उद्धव जी को साथ में लेकर के हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर वालों को मालूम चला कि ओहो बलराम जी आए हैं, तो स्वागत के लिए वे दरवाजे के बाहर पहुंचे। बलराम जी महाराज से कहा, महाराज बड़ी कृपा की, आप पधारिए महल में। तो कहा कि देखो महल में तो बाद में जाएंगे, हम आपसे एक बात बोलते हैं, हमारे महाराज उग्रसेन जी आपको ये आदेश देते हैं कि आप बहुत जनों ने मिलकर के एक सांब को कैद खाने में डाला, ये न्याय नहीं है। तुम्हारा और हमारा अच्छा सनातन चला आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं कि वो पुत्र आप मुझे दे दीजिए और आइंदे कभी ऐसी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर के कौरव एकदम गर्म हो गए। हे महाराज कैसे बोलते हैं, हमारा देखो कैसा खराब दिन आया है, ये यदुवंशी हमको आदेश देने लगे है, ये कब से आदेश देते हैं, आप लोगों को तो राजगद्दी भी नहीं थी, हम गद्दी पर बैठाते हैं, हम चमर लगाते हैं, हम छत्र लगाते हैं और आप हमें आदेश देते हैं, क्या कर लोगे आप लोग मिलकर के हमारा, हम बहुत बलवान बलवान योद्धा है, यदुवंश में कौन बलवान है, हमारी तरफ देखो भीष्म है, द्रोणाचार्य है, अर्जुन है, और भी हमारे पास योद्धा है, कौन है, एक भी योद्धा नहीं तुम्हारे पास, कैसे आदेश देते हो। इतना बलराम जी को जो है डांट फटकार के चले गए। बलराम जी महाराज मन में सोचे कि ओहो इन लोगों को तो बहुत घमंड हो गया, देखो अभिमानी आदमी की चाल भी छाननी चाल, उसका चलना, उसका देखना, उसका बोलना, कोई चीज छिपी नहीं रहती, प्रकट हो जाती है। अच्छा चाल में फर्क है, बोली में फर्क है, लहजे में फर्क है, ठीक है, तो नाना मदोन्नद्धा, ये तो बहुत घमंडी हो गए, इनको सामने शांति की बात करते हैं तो ये शांति की बात नहीं करते। अच्छा, पशु को कोई पुचकारता है तो पशु तो सींग की मारता है, उसका इलाज तो यही है कि उसके एक दो लकड़ी की जमा देवे। हम लोगों की बात नहीं मानते हैं और हमको अनसंत बोल के गए हैं। उग्रसेन राजा नहीं है, और जिसके राज्य में देवता अधीन रहते हैं वो राजा ही नहीं है। जिसके पास सुधर्मा सभा है और जिसके महल में पारिजात वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, और जिनके चरणों की उपासना लक्ष्मी जी करती है, वे श्रीष माने भगवान कृष्ण कुछ है ही नहीं, और ये इतने बड़े हो गए। ओहो, मैं हूँ, ब्रह्मा है, शिव है, दूसरे देवता जिनके आदेश के पालन करने में अपने को धन्य मानते हैं, उस कृष्ण के बच्चे को कैद खाने में रख लेंगे ये। अभी देखता हूँ, अब इन कौरवों के जीने की आयु पूरी हो गई है। ऐसा करके उन्होंने हल लिया, हल लेकर के हस्तिनापुर के ऊपर से हल डाला, खींचने लगे तो हस्तिनापुर सीधा नगर था ही, वो यूं तिरछा हो, इतना तिरछा हो गया वो, अब ऊपर से हल गया वो। बलराम जी का हल मामूली थोड़ा ही होगा। दौड़े दौड़े सब आए, बलराम जी महाराज हमने तो मूर्खता से कुछ कह दिया, बच्चों के कुछ बोलने से माता पिता नाराज थोड़े ही होते हैं, आप तो सबको आधार दिए हुए हो और आप ही डूबोने चले गए तो फिर दूसरा कौन हमको बचाएगा। महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, हम आपकी शरण में आए हैं। तो बलराम जी राजी हो गए, अच्छी बात है भाई, तो लाओ उनको बच्चा बच्ची को दे दो। तो शाम और लक्ष्मणा को खूब आनंद के साथ विवाहित करा के बलराम जी आए गए। ये बलराम जी में बुद्धि बल भी था और शरीर बल भी था। अब मैं तुमको आगे की कथा सुनाता हूं, अब बलराम जी का चरित्र यही रहने दिया। नारद जी महाराज ने देखा कि भाई भगवान की गृहस्थी है, उस गृहस्थी से जनता को क्या मिलता है। भगवान ने इतनी लंबी चौड़ी जो गृहस्थी बनाई है, उस गृहस्थी से गृहस्थी आदमी को क्या सीखना चाहिए। ऐसा विचार करके नारद जी महाराज द्वारिका में आए और द्वारिका में आकर के देखा 16108 महल, किसी एक महल में घुस गए। वहां गए तो भगवान ने आइए आइए नारद जी महाराज, आइए आइए, बोलिए, हम आपका क्या स्वागत करें, कई दिनों में मिले हो, क्या समाचार है, कुछ सुनाइए। नारद जी महाराज कहने लगे, वाह महाराज, आप तो सारे संसार के स्वामी हो, आप दुष्टों का संयमन करने के लिए, भक्तों से मैत्री करने के लिए, एक अवतार से अनेक काम करने के लिए आप आए हो। आपके चरणों को देख लिया महाराज, ये आपके चरण हैं, संसार को अपवर्ग देने वाले हैं, मुक्ति देने वाले हैं, संसार रूपी कुएं में जो गिरने वाले उनको बचाने के लिए आपके चरणों का सहारा मिलता है। हम तो आपके चरणों का ध्यान करते हैं महाराज। नारद जी महाराज दूसरे महल में गए। ओ नारद जी, कब आए आप? अरे अभी अभी तो आपने हमारी स्तुति की थी। कहाँ? उस महल में? नहीं नहीं, मैं तो कई देर से यहां ही बैठा हूं। तीसरे महल में गए, बोले कि हमको कृष्ण से मिलना है। भाई साहब वो तो सो रहे हैं अभी। अरे मेरी स्तुति की है, पूजा की है। नहीं नहीं नहीं, वो सो रहे हैं। एक महल में गए तो वो कैसा, अभी भोजन कर रहे हैं। एक महल में गए तो वहां बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ऐसे नारद जी महाराज भगवान को हर महल में अलग अलग लीलाओं में देखा, तो भगवान ने कहा, नारद जी मेरी लीलाएं देखने की नहीं होती है, मेरी लीलाएं तो सुनने की होती है और मेरी लीलाएं सीखने की होती है। लीलाओं को सुनो और उनसे कुछ तात्पर्य सीखो, और सीख करके तत्शिक्षयन लोकमिमम आस्थित पुत्रमाखिदय, उन शिक्षाओं का प्रचार करो, अपने मन में खिन्नता मत लाओ। नारद जी महाराज जी सब देख करके आश्चर्य में डूब गए। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और वे चले गए। ऐसी ऐसी भगवान की अनेक प्रकार की लीला है भाई, ये लीला है ऐसी जिनको गाने से, जिनका ध्यान करने से, अनुमोदन करने से भक्तिर भवेत भगवती, भगवान में भक्ति होती है। भगवान की दिनचर्या सुनाते हैं, भगवान प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। ब्राह्म मुहूर्त बताया था आपको, फिर बता देते हैं, सूर्योदय से 3.5 घंटे पहले का समय है, पर सूर्योदय से लेकर सूर्य उदित होते हैं तब से लेकर उससे पहले पहले 3.5 घंटे तक का जो समय वो ब्राह्म मुहूर्त होता है, उसको अमृत वेला भी बोलते हैं। उस समय अमृत बरसता, अमृत उस समय में भगवान संत महात्मा सब देते हैं, जिसको जो चाहिए सो लेते रहो। कोई सोया पड़ा रहता है तो उसको निद्रा और आलस्य मिलता है। जो जहां जो काम करता है उसमें वृद्धि की बात होती है, वृद्धि होती है उस समय में। ब्राह्म मुहूर्त में संत महात्मा जल्दी उठकर भगवान का भजन करते हैं, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर के कोई चिंतन करते हैं, ब्राह्म मुहूर्त में कोई और कर, मतलब जो अध्यात्म का काम करेंगे वो बढ़ेगा, कोई लोग संसार का काम करेंगे तो वो ही बढ़ेगा। वो वेला है जो करते हो उसको बढ़ाने की वेला है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ब्राह्म मुहूर्त में भगवान के स्मरण करने की बड़ी महिमा है। तो हमारे भगवान जल्दी उठ करके और क्या करते हैं, वारी उपस्पृश्य, जल आदि से सब निवृत्त होकर अपने ही स्वरूप का ध्यान करते थे। उस समय इंद्रियों में ताजगी रहती है, रात भर इंद्रिया विश्राम को प्राप्त हुई ना, तो इंद्रियों में ताजगी रहती है। एकम स्वयं ज्योतिरनन्यम अव्ययम् स्वसंस्थया नित्य निरस्त कल्मषम् ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षित भाव निर्वृतिम्। ऐसा भगवान का स्वरूप, एक अद्वितीय अनन्य, माने एक अद्वितीय अनन्य माने स्वगत भेद, सजातीय गत भेद, विजातीय गत भेद सबसे रहित अपने स्वरूप का उन्होंने ध्यान किया। अब भगवान किसका ध्यान करें, अपने स्वरूप का ध्यान करें। सब आदमी को उठते ही सबसे पहले अपना जो स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसका ध्यान करना चाहिए, चाहे वो थोड़ी देर ही हो। और उठते ही सबसे पहले शब्द निकलना चाहिए भगवान के नाम का, फिर उसके बाद यथाविधि सब स्नान वगैरह कर करा करके संध्योपासना करके और भगवान जप करते थे। ये किसके लिए, ये अपने लोगों को शिक्षा देने के लिए। फिर देवर्षियों देवताओं की, पितरों की और बड़े बूढ़ों की, ब्राह्मणों की पूजा करते, गौदान करते, माँ बाप की पूजा करते और उसके बाद वे प्रजा की हित की बात करने के लिए सुधर्मा सभा में जाते हैं और वहां न्याय का काम करते हैं, अन्याय को रोकते हैं, प्रजा के कष्ट को दूर करते हैं, प्रजा को सुख कैसे मिले ऐसे वो सोचते थे। एक बार भी सभा में बैठे हुए थे, एक व्यक्ति आया, महाराज जरासंध के यहाँ 20,800 राजा हैं, उनकी तरफ से मैं प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। उन राजाओं ने आपको कहा है, हम सब संसार से डरे हुए आपकी शरण में आए हैं। ये मनुष्य पाप में लगा हुआ है, ये मनुष्य पुण्य कर्म में प्रमादी हो गया है, परंतु काल रूपी शक्ति से आप सबका नाश करते रहते हैं। आप संतों की रक्षा के लिए और दुष्टों का निग्रह करने के लिए हैं। हम संसार के समान स्वप्न के समान थोड़ी देर सुख देने वाले राज्य सुख को सच्चा मान करके बड़ा भारी अनर्थ कर बैठे। हम आपको भूल गए, हम लोग अब इस जरासंध के चक्कर में पड़ गए हैं। इस जरासंध को आपने 17 बार हराया था, एक 18वीं बार आपने इसके सामने से युद्ध से हटकर जो लीला दिखाई उससे ये घमंडी हो गया, और वो हम सब राजाओं को कैद खाने में बंद करके हमारी राजधानियों को छीन करके हमको बड़ा कष्ट दे रहा है। हे प्रभु, हमको बचाइए, हमको बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसी वो बात पूरी करा, उसी समय में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी आए, नारद जी आए तो नारद जी ने कहा, भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, और आपके पांडव लोग तो महाराज आजकल आपका एक बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। मैंने आपकी बहुत सी मायाओं को देखा है और आपके लीलाओं को कौन जान सकता है। आप संसार में जो माया रखते हैं उसको भी लोग नहीं समझ सकते, फिर आपके लीला के अंदर जो माया रचते हैं उसको कौन समझ सकता है। हमारे महाराज युधिष्ठिर आज संसार में सबसे पहले आपकी पूजा करके पर पारमेष्ठी पद की कामना करते, पारमेष्ठ काम है, और उसमें भी आपको अपने यज्ञ के अंदर बुलाना भी चाहते हैं। आपका यश तो महाराज त्रिलोकी में फैला हुआ है, ये गंगा जी आपका यश ही तो है। इस गंगा जी का नाम मंदाकिनी पड़ा है, मंदाकिनी तो है स्वर्ग में बहती है तब, और पृथ्वी पर बहती है तब इसका नाम गंगा होती है, और पताल में बहती है तब इसका नाम भोगवती होता है। परंतु है ये आपका यश, आपका ये प्रभाव है महाराज। इसी प्रभाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पांडु लोग एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान ने दोनों की एक साथ बात सुनी, 20,800 राजाओं के दूत की बात भी सुनी और नारद जी की भी बात सुनी। उन्होंने अपने परम प्रिय मित्र उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी आप हमारे में बड़े बुद्धिमान हो, इधर 20,800 राजा दुखी है, इन दुखियों की सहायता पहले करें या पांडु लोग जो राजसु यज्ञ कर रहे हैं उसमें वो काम पहले करें, कौन सा काम पहले करना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज पहले आपको राजसु यज्ञ में जाना चाहिए। क्यों? वो बेचारे दुखी राजा लोग हैं, उनकी उन्हीं के लिए बता रहे हैं। दुखी राजाओं को सुखी करने के लिए पहले आपको राजसु यज्ञ में जाना चाहिए। क्यों? कि राजसु यज्ञ में जाएंगे तो आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि पृथ्वी पर जरासंध के पक्ष में कौन है और हमारे पक्ष में कौन है। हाँ ये बात ठीक है। और उसके पश्चात जब आपको ये पता चले कि अब जरासंध अकेला ही है या जरासंध का पक्ष बहुत कमजोर हो चुका है तो फिर आप वहां खून खराबा मत कीजिए। फिर आप जरासंध को अपनी बुद्धि कौशल से पराजित कर दीजिए। उद्धव जी आपकी बात तो बड़ी गहरी है महाराज, इससे एक काम से दो काम सिद्ध हो जाएंगे। आपका पहला काम दुखियों का दुख दूर करने का होगा और बाद में यज्ञ होगा। कैसे? कि जब आपको ये पता चलेगा कि जरासंध हमारे विपरीत यहां यज्ञ में नहीं आ रहा है तो पहले आप जरासंध को जीतना, आप अपने साथ भीमसेन जी को ले जाना और अर्जुन को ले जाना, तीनों आप ब्राह्मण होकर के जाना और फिर तुम जरासंध को जीत लेना। जरासंध को जीत लेने के पश्चात फिर आप यज्ञ करना। देखा क्या उद्धव जी की युक्ति है? यज्ञ असल में यज्ञ तो बाद में ही होगा, पर पहले आप यज्ञ में जाने का काम कीजिए। भगवान बड़े खुश हो गए। उन्होंने दूत से कहा, दूत तुम जाओ और 20,000 राजाओं को तुम ये बोल दो कि अब तुम्हारा दुख दूर करने के लिए हम अपना प्रयास करेंगे, तुम्हारे अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान आए महल में, अपने स्त्रियों से कहा कि भाई हम तो इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी में है कि महाराज हम भी चलेंगे, युधिष्ठिर का राजसु यज्ञ तो हम पीछे थोड़ी रहेंगे। तो सब जो है वहां से रवाना हुए। बहुत सा सामान उन्होंने वहां लाद लाद करके इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। भगवान इंद्रप्रस्थ पर पहुंचे तो वहां भगवान का सुस्वागत हुआ। लोग कहते हैं कि सुस्वागत में दो बार सु आता है, सु सु आगत। नहीं नहीं, दो बार नहीं आता है, ये एक बार ही आया है, सु स्व आगत। अपने लोगों का खूब अच्छा वहां पर आव भगत की गई, सुस्वागतम। और कुंती ने तो भगवान कृष्ण की जितनी पत्नियां थी सबको आशीर्वाद, गोद में बैठा बैठा के आशीर्वाद दिया। अरे रुक्मणी तुम कृष्ण की पत्नी हो, अरे सत्यभामा, अरे जाम्बवती, हे कालिंदी, हे मित्रबिंदे, हे सत्ये, हे लक्ष्मणे, ऐसे करके एक एक को आशीर्वाद दिया। बहुत जो है प्रीता के मन में बहुत खुशी हुई, प्रीतात्मा उत्थाय। कुंती अपने आसन से खड़ी हुई और जैसे कोई बेटियों से मिलती हो ऐसे उन सबको छाती से लगा लगा के परिसस्वजे छाती के लगाया। और द्रौपदी जी ने उन सबको अपनी सखियों के समान इतना आदर दिया, सारा महल उन लोगों के लिए खोल दिया। सब वहां पर बड़े आनंद से रहने लगे। और इधर एक बार महाराज युधिष्ठिर की सभा लगी हुई थी, भगवान कृष्ण उसमें विराजमान थे। युधिष्ठिर ने सभा में खड़े होकर कहा, हे गोविंद, हम जो ये राजसु यज्ञ करने जा रहे हैं ये राजसु कहने के लिए तो है कि हम परमेष्ठी पद के लिए कर रहे हैं, असल में हमारा तो सबसे बड़ा राजसु यज्ञ का प्रयोजन इतना ही है कि संसार के अंदर आपके भक्तों की महिमा का विस्तार बने। लौकिक कामनाओं के लिए तो बहुत यज्ञ है परंतु हम तो आपके यश का विस्तार, आपके भक्तों का विस्तार लोगों के अंदर फैलाना चाहते हैं। आपका कोई लेना देना नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर अपने प्राय का भेद ही नहीं है। आपके आपका भजन करने वालों का कल्याण वैसे ही होता है जैसे कल्प वृक्ष के नीचे रहने वालों का जो है उनका उनकी कामना पूरी होती, उनका मनोरथ पूरा होता है। तो कल्प वृक्ष थोड़े ही कोई उसमें भेद करता है। ऐसे आप तो महाराज कल्प वृक्ष के समान हो, जो जैसे आपकी भक्ति करे आप उसको वैसे ही स्वीकारते हो। भगवान ने कहा कि देखो राजन, तुम्हारी सब बात तो ठीक है, लेकिन पहले चारों दिशाओं को जीत करके आओ, तुम्हें मालूम करना चाहिए कि कौन कौन राजा तुम्हारे पक्ष में है। चारों दिशाओं में अपने चारों भाइयों को भेजा और चारों भाइयों ने कहा कि महाराज एक केवल जरासंध है, वो हमारे बस में नहीं आया हुआ है, बाकी सब राजा अपने पक्ष में है। क्या अच्छी बात है। अब भगवान कृष्ण बलराम, कृष्ण और अर्जुन और भीमसेन तीनों के तीनों ब्राह्मणों का रूप बना करके और जरासंध के वहां पर पहुंच गए। वहां वो ब्राह्मणों को खूब दान देता था, ब्राह्मणों को दान देते समय में वो बड़ा उदार होता था। तो उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मणों को देते देते जब भगवान का नंबर आया ना, तो एक तरफ तो बलराम भीमसेन जी खड़े हो गए, फिर भगवान कृष्ण हो गए, उधर अर्जुन हो गए, ऐसे करके खड़े हुए। भगवान अब बोलने में बड़े चतुर। भगवान ने कहा, हे महाराज जरासंध जी, हम बहुत दूर से आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। हमारे मन में दृढ़ विश्वास है कि जो हम आपसे मांगेंगे आप उसको कभी भी किसी प्रकार से मना नहीं करेंगे। अरे आप तो बहुत बड़े दानी हो, आपके लिए कोई चीज दान देने के लिए मना होती नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि शरीर तो अनित्य है, इसके द्वारा जो यश कमा लो सो कमा लो, शरीर के मरने के बाद हम क्या कर पाएंगे, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो। हे महाराज, हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए कितना कष्ट उठाया, राजा रंतिदेव ने मांगने वालों को सब कुछ दे दिया, राजा शिवी ने अपने आप के शरीर को काट के दे दिया, और बलि ने विष्णु के लिए अपने राज्य को दे दिया, और तो और एक व्याध ने, एक शिकारी ने एक कबूतर ने शिकारी को अपनी जान तक दे डाली। ऐसे बहुत से लोग हुए संसार में जो दान के अवसर पर बड़े उदार बनते हैं, इसलिए हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। जरासंध देख रहा है कृष्ण को एक टक की ये आदमी पहले कहीं देखा हुआ है, देखता है कि ब्राह्मण है क्या। ब्राह्मण होता है देखो उसका शरीर कोमल होता है, इसके शरीर में सौष्ठव है, कोमलता नहीं है, प्रगाढ़ता है। दूसरे इसकी कलई में यहाँ ये धनुष के डोरी की रगड़ लगने से यहाँ की चमड़ी का रंग कुछ और हुआ है, और ब्राह्मण होता है उसके भिक्षा मांगते हुए उसके चेहरे पर और नेत्रों में एक अलग ही सौम्य भाव होता है, ये चीजें इसमें नहीं दिखाई दे रही है। सोचते रहे क्या बात हो सकती है। मन में सोचा, अरे राजा बलि को तो पहले बता ही दिया शुक्राचार्य जी ने कि विष्णु है, फिर भी वो दान के अवसर पीछे नहीं सिरका, तो क्यों पीछे सिरकता है। ये ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे, यही कहेंगे ना कि सिर दे दो, हमारा सिर काट के दे देंगे, तलवार सामने रख लू, रख ली सामने। हे ब्राह्मणों, उदारता से मांगिए, ये जरासंध जो मांगता है ब्राह्मण उसको सब कुछ देने के लिए तैयार है। यदि आप सिर भी मांगो तो ये मेरे पास तलवार रही, मैं अभी सिर काट के भी आपको समर्पित कर सकता हूं। भगवान ने कहा, जरासंध जी, हम यहाँ आपसे कोई अन्न मांगने नहीं आए, हम आपसे यहाँ आपका आप ही के द्वारा काटा हुआ सिर मांगने नहीं आए। कायरतों का कायरों का लक्षण है, हम आपसे युद्ध मांगने आए हैं, क्योंकि हम स्वयं बड़े योद्धा हैं, हम चाहते हैं कि अपने साथ में एक रथ युद्ध हो, और उस एकल युद्ध में, द्वंद युद्ध के अंदर जो जीतेगा वो उसका सर्वस्व उसका हो जाएगा। माने आपने हमको जीत लिया तो हमारा सब कुछ आपका, और हमने यदि आपको जीत लिया तो आपका सब कुछ हमारा। आप जानते हो ये हमारे वृकोदर जी हैं, भीमसेन जी हैं, और ये हमारे अर्जुन हैं, और मुझे तो पहचाने होंगे ना, मुझे पहचाने कि नहीं भाई, नाम बताओ देखे। अरे 17 बार मैंने तुम्हारी पिटाई की और अब भी नाम बाकी रह गया। मेरा नाम है वासुदेव कृष्ण। अच्छा तुम वासुदेव कृष्ण हो, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि इसकी वाणी में बड़ी चतुराई है, बोलने में तुम बहुत चतुर हो, अच्छी बात है। नत्वया भीरुणा योत्स्ये, तेरे साथ तो युद्ध करूंगा नहीं, तो एक बार हमारे सामने पीठ दिखाकर भग गया। ये अर्जुन तेरे जैसा ही मुर्दीला है, अर्जुन से क्या तुम्हें युद्ध करूं। अर्जुन यदि मुझे हरा भी देगा तो मेरी इज्जत जाएगी, और मैं अर्जुन को हरा दूं तो मेरी इज्जत जाएगी, मेरी तो इज्जत दोनों अवस्थाओं में जाएगी। क्या अर्जुन को मैंने हराया? लोग कहेंगे अर्जुन दुबला पतला, उसको हरा दिया, और अर्जुन मुझे हरा देगा। अरे अर्जुन ने तुझे हरा दिया, मेरी तो दोनों तरफ बदनामी होने वाली, अर्जुन को भी हटाओ। हाँ दो दो हाथ करेंगे तो हम भीमसेन जी के साथ करेंगे, आओ भीमसेन जी आओ। दोनों गदा लेकर के आए युद्ध में, बड़ा घमासान दोनों का युद्ध हुआ। देखो इस पे लिखा है चट चट शब्द होने लगे, ततश्च चट चटा शब्द है। दो गदाएं लड़े, चट 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 ऐसे आवाज आने लगी। खूब दोनों का युद्ध हुआ, कई कई पैंतरे आपस में एक दूसरे लगाने लगे। लड़ते लड़ते 27 दिन हो गए। भीमसेन जी ने रात्रि में कहा कि देखो कृष्ण, तुम बड़े चालाक हो, तुम्हारी इनकी लड़ाई दोनों की, ये जरासंध की लड़ाई तुम्हारे साथ थी ना, जरासंध का यादों के साथ बैर है, कौरवों के साथ तो नहीं था ना, तुम्हारी लड़ाई हमारे घर में डाल दी, हम लोगों को सो तुमने इनको भिड़ा दिया। तुमको यदि जीतना था तुम जीतते, और तुमको मालूम है कि मैं नहीं जीत सकता, तुम आए क्यों यहां? मैं तो आज तक कभी ऐसा योद्धा देखा नहीं हूं। देखो कृष्ण, सच्ची बात तो ये, कल मैं लड़ाई नहीं करूंगा, कल मैं गदा लेकर गदा उसके सामने रख दूंगा और कह दूंगा भाई मैं तो हार गया, तुमको क्या पता, ये देखो मेरे यहां हड्डी टूट रही है, तुमको क्या पता ये मेरे कमर में कितना दर्द है, ये पसली में कितना दर्द है, तुम तो आराम से बैठे हो, सुबह से देर शाम तक कितनी बार भोजन भी करते हो, और हम लोग तो भाई ऐसे लड़ रहे हैं, हमारी तो फालतू ही यहाँ पर शक्ति क्षीण हो रही है। कृष्ण मैं तो हार गया है। भगवान ने कहा बस हारे का हरि नाम, जो मेरे सामने हारने का नाम लेता है वही मुझे प्रिय लगता है। भीमसेन जी, भीमसेन बड़े थे, भगवान भीमसेन के चरण छू के प्रणाम करते थे, और भीमसेन भगवान को आशीर्वाद देता है, बात भीमसेन आशीर्वाद है। ठीक है, महाभारत के युद्ध में एक बार बाण छोड़ा, कर्ण ने बाण छोड़ा, किसी ने बाण छोड़ा, वो बाण ऐसा अमोघ था, वो भीमसेन के लिए छोड़ा। भीमसेन था लकड़बाज आदमी, एक खड़ा रहा हूं, भगवान ने अरे रे मर जाएगा इस बाण से, तो भगवान उस रथ को लेकर भीमसेन के पास गए और पीछे से गर्दन पकड़ करके जबरदस्ती उसको झुकाया, झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ।
वो बोलते रहे मेरे को झुकाते क्यों, मेरे को झुकता जा रहा है, झुकाते क्यों, झुकाते जीते बाण चला गया। भीमसेन जी इस बाण से मर जाते आप। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्ती भगवान ने झुकाया। आज भीमसेन खुद झुक गए कि महाराज मैं तो लड़ाई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा अब ठीक है, जो हारता है मेरे सामने, जो हारता है वही जीतता है। तुम क्यों हारे, तुम्हें क्यों ये गदा की चोट पड़ी मालूम है कि मालूम नहीं है? अच्छा तुम लड़ाई के समय में किधर ध्यान रखते थे? लड़ाई का भुजा पर जा रहा था, ऐसे करके लड़ता था, और गदा को ये देख रहे मेरी गदा में कितना बल है ये समझता था। तो वो बस वो बल चला कि नहीं चला मारा? तो कल अब क्या, कल तुम मेरी तरफ देखते रहना। तो अरे आपकी तरफ तुम पहले ही देख लेता। अब देखो देख लेते, देखा तो नहीं ना, देख लेते में और देखने में फर्क है। कल तुम मेरी ओर देखना। तो भाई भीमसेन जी को रात भर नींद नहीं आई कि मैं कृष्ण की तरफ देखूंगा, कृष्ण की तरफ देखूंगा, कृष्ण की तरफ देखूंगा। बड़ी खुशी आई, ये आराधना हो गई उनकी। अब कब सुबह आए, कब सुबह आए, और कब मैं युद्ध करते हुए कृष्ण को देखूं, युद्ध करते हुए कृष्ण को देखूं। उसने गदा तो ले ली, अब वो न तो अपने बल को देखता है, न गदा को देखता है, न जरासंध को देखता है, कृष्ण को देखता है। कृष्ण ने कहा सुनो सुनो, एक टहनी तोड़ी, वृक्ष की टहनी तोड़ करके उसके दो टुकड़े कर दिए। अब भीमसेन क्या था, वो गदा लेकर के जरासंध को पटक दिया, पटक करके उसके दो फाड़ कर दिए, दो फाड़ करके जैसे भगवान ने बताया वैसे उनको फेंक दिया, और धुंधलियां बजने लग गई, फूलों की वर्षा हो गई। अरे इतना सा, इतनी सी देरी लगी। भीमसेन को ज्ञान हुआ, अरे हम लोग भगवान को भूलते हैं, इसलिए सरल से सरल काम भी कठिन हो जाता है, और भगवान को याद करके काम किया जाए तो कठिन से कठिन काम भी सुगम हो जाता है। भीमसेन जी और अर्जुन सब शंख बजाते बजाते वहां जो है विजय का शंख बजाए, सहदेव को वहां राजा बना दिया। सहदेव कौन सा? इस जरासंध का बेटा, जरासंध के बेटे का नाम सहदेव था, उसको राजा बना दिया। और भगवान उन 20,800 राजाओं के पास खुद गए जेल खाने में। अब जाकर के भगवान के उन्होंने दर्शन किए। देखो भगवान खुद क्यों गए हो, भगवान इसलिए गए कि भगवान के पास में दूत को भेजा उन राजाओं ने, राजाओं ने दूत को भेज करके भगवान के प्रति अपनी आराधना अभिव्यक्त की, तो भगवान स्वयं जेल खाने में दर्शन देने गए। सब राजाओं ने कहा महाराज ये राज्य का ऐश्वर्य का मद ऐसा होता है इसमें आदमी अंधा हो जाता है, मृग तृष्णा के समान, यहां मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन उस जल में मृग तृष्णा के जल में सब डूब करके मरते चले जा रहे हैं। हम लोग भी एक दूसरे को जीतने की इच्छा से पुरुषों को मारते हैं, प्रजाओं को मारते हैं, बड़ा घृणित काम है महाराज। ये राज्य वास्तव में मृग तृष्णा के समान झूठा है, और केवल आपकी ही सच्चे हैं, जो कानों से केवल सुनाई देने वाले आप हैं वो सच्चे हैं महाराज। अब महाराज हम आपको नमस्कार करते हैं, हमारी स्मृति हमारी याददाश्त आपके चरणों में रहे, इसके अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि राजाओं आप लोग बड़े आनंद से जाओ, और देखो ये राजपद है ना, ये राजपद तो इसलिए मिला है कि प्रजा को मेरा स्वरूप समझ के सेवा करो। उदासीनाश्च देहादौ, आप लोग देह आदि से उदासीन रहो, कीर्ति अपकीर्ति से उदासीन रहो, और अपना मन मुझ में लगाओ, और अंत में आप मुझे प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर के भगवान कृष्ण वहां से सब राजाओं को बड़े सम्मान के साथ अपने अपने घरों में भेजते हैं, नला धुला करके अच्छे कपड़े पहना करके रथों में बैठा बैठा करके भेजते हैं। और स्वयं भीमसेन और अर्जुन के साथ शंख बजाते हुए इंद्रप्रस्थ आते हैं और वहां इंद्रप्रस्थ में यज्ञ की खूब बढ़िया तैयारी चल रही है। युधिष्ठिर महाराज को सब समाचार सुनाई, युधिष्ठिर जी बड़े आनंदित हो गए। युधिष्ठिर जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि महाराज आप कितने महान हैं, संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियां आपके सामने सिर झुका झुका के रहती है, वे आप दीनों के ऊपर कृपा करने वाले, गरीब है अनाथ है। देखो गरीब से यहां पर धन का अभाव वाला नहीं, गरीब से मतलब यह है जो अपने को साधनहीन मानता है। भगवान का भजन करता हुआ साधन करता हुआ ये मानता है कि मैं बड़ा गरीब हूं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, वो गरीब की बात है। लोग देखते हैं कि जो पैसा नहीं है वही गरीब है, नहीं पैसा नहीं है तो भाग्य की बात है भाई, पैसा नहीं है तो उसके लिए भजन साधन करने में सहायता है। परंतु जहां भगवान को दीननाथ का है, दीन है, वो दीन कौन सा कि जो भजन साधन करता हुआ ये मानता है कि मेरे भजन साधन नहीं हो रहा है। संतों ने कहा है दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, जैसा नाम था वैसा हम ले नहीं सके। ये क्या है, ये साधन करते हुए दीनता है। ऐसे जो दीन होते हैं उन दीनों पर आप बड़ी कृपा करते हैं, खूब भगवान का नाम ले ओ, पर ये मत सोचो कि हम खूब नाम लेते हैं। हम जितना अब तक बोले हैं ना, दुनिया की बातें किए, उतने तो हमने भगवान के नाम का उच्चारण किया ही नहीं है। कितने जन्मों से भगवान ने हमको वाणी दी है, क्या क्या हम शब्द बोलते आए हैं, भगवान का नाम तो उतनी मात्रा में नहीं लिया ना। नाम लेने वाला व्यक्ति कैसे अभिमान कर सकता है कि मैं खूब नाम लेता हूं, इसलिए नहीं ले सकता कि वही तुम थोड़ी देर नाम लेते हो, इस जन्म में जब से सीखे तब से लेते हो, परंतु जब से तुमको होश नहीं था तब तुम क्या करते थे, नाम कहां लेते थे, दुनिया का बकवास करते थे, जन्म जन्मांतर से बकवास ही तो बकवास करते थे। तो दीन वो है जो अपने को दीन मानते हैं, भजन करते हुए अपने को दीन मानते हैं, उन दीनों के आप स्वामी हैं। आश्चर्य महाराज, संपूर्ण त्रिलोकी जिनके सामने झुकती है वे भगवान दीनों के सामने झुकते हैं। आपका यदि हम सम्मान करें तो न आपका कोई यश बढ़ता है, और यदि हम आपको सम्मान न दें तो कोई आपका यश नहीं घटता है, आपका कुछ घटता बढ़ता नहीं है। फिर भी महाराज हम आपका सम्मान तो करना चाहते ही हैं। उस यज्ञ के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, व्यास जी आए, भरद्वाज जी आए, वशिष्ठ च्यवन कर्ण आदि आए, बड़े बड़े राजा लोग आए, विदुर जी जैसे महाबुद्धिमान लोग आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब वहां उस आए यज्ञ में। सोने के वे पात्र थे, ऋषि मुनि यक्ष राक्षस किन्नर विद्याधर चारण महोरग ये सब वहां उपस्थित थे। उस यज्ञ में ऐसा कोई नहीं था जो नहीं आया। उस राजस्व यज्ञ की अब खूब अच्छे ढंग से तैयारी होने में एक ही बात थी कि पहले पूजा किसकी की जाए। कई नाम आने लगे, सहदेव ने खड़े होकर कहा देखो भाई सब नाम आने बंद करो, हर नाम में कोई न कोई विवाद खड़ा होगा, हम एक निर्विवाद का अग्र पूजन करने जा रहे हैं। यदुवंश शिरोमणि वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण का हम यहाँ आज अग्र पूजा में उनका नाम रख रहे हैं, क्योंकि यज्ञ का स्वरूप भी उनका, हम भी उनके, यज्ञ की क्रिया भी उनकी, अग्नि आहुति सारा विश्व जिनका स्वरूप है, ऐसे एक अद्वितीय श्री कृष्ण का नाम रखने में किसी का भी कोई विरोध नहीं है। इसलिए लाओ अग्र पूजा की सामग्री लाओ, हम कृष्ण की पूजा करते हैं। सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा, तालियां बजाई, आनंद में डूब गए, वाह वाह बहुत अच्छा। ऐसा करके वो सामग्री लाए, वहां सामग्री पूजा की सामग्री ला करके जो ही भगवान का पूजन कर ठहरो 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 क्या हो रहा है इतना बड़ा अन्याय। सब लोग देखेगी ऐसी ऐसी अभिमान पूर्ण वाणी कौन बोलता है। देखा एक योद्धा अपने स्थान से खड़ा होकर बड़े क्रोध में आया हुआ, कैसा ये भयंकर दुष्काल आया है, बड़े बूढ़ों की कोई बात मानता नहीं है, बच्चों की बात का सब समर्थन करते हैं, यहाँ बड़े बड़े सत्संगपति बैठे हुए हैं, तपस्वी और विद्वान पुरुष बैठे हुए हैं, व्रती बैठे हुए हैं, ज्ञानी बैठे हुए हैं, ऋषि परम ऋषि बैठे हुए हैं, उन सबको छोड़ करके आप एक ऐसे आदमी की पूजा करना चाह रहे हो जो वर्ण धर्म से बहिष्कृत है, जो सर्व धर्म से निकाला हुआ, सब धर्म से अलग हुआ हुआ है, जो स्वैरवर्ती है, जो गुणहीन है, उसकी पूजा कर रहे हो। और ययाति ने तो श्राप दिया था यदुवंशी कभी राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकते हैं, आज वो समुद्र के अंदर जाकर अपना मुंह छिपाने के लिए बैठा है, उसकी तुम अग्र पूजा करते हो। पांडवों ने कहा अरे शिशुपाल तुम्हारी इतनी मजाल, हमारे हाथ में शस्त्र तो इतनी बात बोलता है, अपने आसन से खड़े हो गए। भगवान की निंदा करने वाले को जो पाप लगता है, उनकी निंदा सुनने वाले को उससे कम पाप नहीं लगता है। खड़े हो गए मारने के लिए भीमसेन अर्जुन वगैरह अपने अपने स्थान से। भगवान ने कहा भीमसेन जी बैठ जाइए, अर्जुन आप भी बैठ जाइए। बड़ी गंभीरता से कहा शिशुपाल मेरा आपसे निवेदन है, आप जितना बोल सके हो चुप हो जाओ। तुम्हारे यदि 100 अपराध हो गए तो फिर उसके बाद तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। अब तक के सब अपराधों को मैं क्षमा करता हूं, परंतु अब आगे अपराध करोगे तो फिर तुम अक्षम्य अपराध में चले जाओगे। क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे तुम? ऐसे करके वो वापिस बोलने लगा। उसी समय में भगवान ने नेत्र बंद करके सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, भगवान के अंगुली में सुदर्शन चक्र आया और उस चक्र से भगवान ने यूं उसके ऊपर प्रहार किया और शिशुपाल का सिर कट करके उसकी ज्योति आकर भगवान में मिल गई। ओहो, 3-3 जन्मों से वो भगवान का स्मरण कर रहा था तो भगवान में जाकर के मिल गया। उस समय में द्रौपदी ने देखा कि भगवान के अंगुली में सुदर्शन चक्र से चोट लग गई या कुछ रगड़ लग गई तो खून बहने लगा। द्रौपदी ने भरी सभा में, अब आप सोचिए कि उस भरी सभा में कितना मूल्यवान कपड़ा पहना होगा, और भी तो लोग थे, द्रौपदी से सहा नहीं गया कि मेरे कृष्ण के सुदर्शन चक्र से यहां अंगुली के अंदर घाव हो गया, अपना बढ़िया कपड़ा फाड़ दिया है, सबके बीच फाड़ करके लपक करके खुद गई और कृष्ण के अंगुली के ऊपर कपड़े को पहनाया। सजल नेत्रों से भगवान ने द्रौपदी की ओर देखा। भगवान के मन में आया द्रौपदी तुमने भरी सभा में आज साड़ी फाड़ करके मेरे दर्द को समझ करके उसको दूर करने का प्रयास किया, तेरे इस कृत्य का ऋण किसी प्रकार उतार नहीं सकूंगा, ऐसा मन में विचार किया। ये उसी साड़ी के फाड़ने का फल था कि उसी भरी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा तो भगवान ने उस साड़ी के फल में वो चीर दिया है, वस्त्र दिया गलो। तुमने हमको इतना सा कपड़ा दिया तो हम तुमने तुमको कितना सा दिया। इसीलिए कहते हैं कि भाई अपने जीवन में जो वस्तु है वो भगवान के अर्पित करो, इसलिए नहीं कि वो हमको ज्यादा देंगे, इसलिए नहीं बल्कि भगवान को अर्पित करने पर उस वस्तु की शोभा कुछ और ही हो जाती है। भगवान के अर्पित किए हुए भोजन से आपके शरीर पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आजकल लोग आते जाते सीधा ही रसोई मना भोजन किया, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। आप भगवान के भोजन का भोग लगा के भोजन करो ना,
आपकी कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये एक कायदा है, भगवान के अर्पित करने पर उस वस्तु में दिव्यता आएगी, वस्त्र में दिव्यता आएगी। घर में कोई बढ़िया कपड़ा आया, नया कपड़ा आया, पहले भगवान के रखो फिर उसके बाद पहनो। तो द्रौपदी ने यही किया। उधर भाई राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ, सब लोग जो है अपने अपने स्थान पर जाने लगे। सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, पर एक दुर्योधन ऐसा था जिसके मन में डाह पैदा हुई। राजसूय यज्ञ के अंदर अंतिम स्नान करिए, ये अवभृत स्नान करने के लिए गंगा जी में गए, स्नान किया। स्नान करने के बाद ये अपने महल में आए तो ये सब लोग बैठे हुए थे। उस समय में दुर्योधन उस महल में आया, बड़ी सुंदर झांकी है। सिंहासन पर हमारे महाराज युधिष्ठिर विराजमान, युधिष्ठिर के बाईं ओर द्रौपदी विराजमान, युधिष्ठिर के दाईं ओर भगवान कृष्ण विराजमान, और अगल बगल में कहीं भीमसेन है तो कहीं अर्जुन है तो कहीं नकुल है, कहीं सहदेव, सब विराजमान है। सभा के अंदर दुर्योधन प्रवेश करते हैं, वहां उनको जल में थल का, थल में जल का भ्रम होता है। कहीं उनको दरवाजा खुला मिलता है पर वहां वो भीत लगती है, जहां भीत है वहां दरवाजा खुला है, ऐसे वो भ्रमित हो गए। जब वे पानी के अंदर पड़ गए, भीमसेन जी जल समझ के चल रहे और पानी में पड़ गए, तो भीमसेन को देख करके, दुर्योधन को देख करके, दुर्योधन गिर गए पानी में, तो भीमसेन है, द्रौपदी है, ये खूब जोर से हंसे रहे हो। अरे देखो ये इसमें तो नहीं आया, महाभारत में लिखा, रहे रे रे अंधे के बेटे अंधे होते हैं, अरे अंधे के बेटे अंधे। वो दुर्योधन काटो तो खून नहीं, इतना जल भुन गया, इतना उसको क्रोध आया, करे क्या वो। युधिष्ठिर महाराज ने मना किया, क्या करती हो द्रौपदी? भीमसेन ये तो अच्छी बात नहीं है, ये दुर्योधन भी तो तुम्हारे भाई है, क्या एक भाई को गिरते देखकर दूसरा भाई राजी होता है? ऐसे परिहास नहीं करना चाहिए, अनुचित समय में हंसना रोने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, ऐसे हंसना बंद करो, टोका। तो भगवान ने थोड़ा सा ऐसा कहते तो हंसो हंसो, द्रौपदी को भी सारा करें हंसो हंसो। बिचारी युधिष्ठिर जी को पता नहीं, हंसने का और कह दिया भगवान ने। अब वो खूब ज्यादा जो है भीम, उसका अर्जुन, ये दुर्योधन का अपमान हुआ ना, तब वो वहां से बड़ा नाराज होकर के रवाना हुआ। तो देखो सब तो बड़े भीमसेन दिए, ये हमारे युधिष्ठिर वगैरह तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पर भगवान कहने लगे बहुत ही अच्छा हुआ है युधिष्ठिर महाराज, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? बभूव तोष्णीं भगवान भुवो भरम समुज्जिहीर्षुर भ्रमति स्म यदृशा। भगवान ने देखा कि पृथ्वी का भार हल्का करने का मौका अब मिलेगा, ये जाएगा बदला लेगा, राजाओं को इकट्ठा करेगा, युद्ध करेगा, बस पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। ये भगवान की लीला का रहस्य है। देखो लीला तो बता रहे पांडवों की यहां, और भगवान ने कैसी लीला करी? लीला कहीं इशारों से लीला करते हैं, कहीं जबान से लीला करते हैं, कहीं कैसी लीला करते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं और भी हम तुमको कृष्ण का प्रभाव सुनावे। ये जो शाल्व राजा था ये शिशुपाल का परम मित्र था, रुक्मणी के विवाह के समय आया था, तब से कृष्ण के साथ उसका घनिष्ठ बैर हो गया। तो कृष्ण भगवान तो इधर पांडवों के राजसूय यज्ञ में आए हुए थे, उसने पीछे से द्वारिका पर आक्रमण कर दिया और प्रद्युम्न जी उनके साथ लड़ने लगे। लड़ते लड़ते प्रद्युम्न जी घायल हो गए, तब जो है प्रद्युम्न जी को उनका सारथी रथ रणभूमि से दूर ले गया।
प्रद्युम्न जी बड़े नाराज हुए, सारथी से कहने लगे ये क्या किया तुमने। कहना ही महाराज मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सारथी का कर्तव्य होता है कि वो रथी को रणभूमि से अलग ले जाए। मैं कोई आपको महलों में थोड़ी लाया हूं, मैंने आपको कहीं ले जाकर छिपाया थोड़ा ही है, मैंने आपको रणभूमि से थोड़ी देर अलग किया है ताकि आपको होश आ जाए फिर आप लड़ो। मैंने बिल्कुल नीति संगत काम किया है। तो प्रद्युम्न जी फिर लड़ाई करने के लिए जो है आए, घमासान युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध चलाए। इधर भगवान जो है ये पांडवों का राजसूय यज्ञ पूरा करके आए तो देखा कि द्वारिका में तो यहां सेना लग गई, भगवान भी सेना में है। क्या बात है कि बात क्या है महाराज, ये साल्व की सेना है। तो भगवान भी उस सेना के अंदर, अपनी सेना के अंदर हो गए, वो भी युद्ध करने लगे। साल्व ने देखा कि वासुदेव कृष्ण आ गया, अब तो जीतना मुश्किल है। अब उसने वहां पर माया फैलाई, माया से कहा ए कृष्ण तेरे पिता वसुदेव जी को हम यहां अपने हाथ में पकड़ करके लाए हैं, इनका अंतिम दर्शन कर लो क्योंकि अब हम इनका सिर काटने वाले हैं। ऐसा करके सिर काटा, वसुदेव जी का सिर कट गया। भगवान के हाथ से तो शस्त्र छूट गया। रे ऐसे पिता से मैं पैदा हुआ और उस पिता को मेरे सामने मार दिया, हाय हाय बड़ा शोक मोह हुआ। ये माया थी भगवान की। भगवान के शोक मोह थोड़ी होता है, थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी ऐसे तो मरने वाले तो नहीं है, थोड़ी सी अपने माया में प्रवेश किया। देखो अरे रे ये तो सब झूठी बात है। तब भगवान ने कहा अरे तू तो झूठी माया दिखाता है, मेरे पिता का तू कटावा सिर दिखाता है, हम देख तेरा कटावा सिर दिखाते हैं। उसी समय में भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और चक्र से उसका सिर काट दिया। साल्व जब मारा गया तो देवताओं ने धुंधबिया बजाई और दंत वक्त्र था शिशुपाल का, शिशुपालस्य साल्वस्य इन सब का बदला लेने के लिए वो आया दंत वक्त्र। तो दंत वक्त्र के साथ में भी युद्ध हुआ, दंत वक्त्र भी मारा गया। ऐसे करके विदुरथ आया, विदुरथ भी मारा गया। ये तो कृष्ण की बात हो गई। एवं योगेश्वर है कृष्ण है। अब हम तुमको बलराम जी की एक लीला सुनाते हैं। देखो अब देखो बलराम जी की और लीला तो सुनाई, यहां दूसरी लीला ध्यान दे के सुनना। कहते हैं बलराम जी महाराज ने देखा कि कौरवों का और पांडवों का युद्ध तो अब होना निश्चित है और ये हमारा भाई छोटा भाई कृष्ण है, ये तो खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से कहता है मैं तो पांडवों के पक्ष में हूं, मैं इसके सामने कैसे कहूं कि मैं कौरवों के पक्ष में हूं, हूं तो मैं कौरवों के पक्ष में पर छोटा भाई है, कृष्ण उनकी तरफ है तो मैं इधर होता अच्छा नहीं लगता। तो कृष्ण से पूछा कृष्ण मुझे क्या करना चाहिए, भाई जी आप तीर्थ यात्रा में घूम जाओ थोड़े दिन। तो वो तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, तीर्थ यात्रा में खूब घूमे, घूमते घूमते वे नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य के अंदर हमारे रोमहर्षण जी महाराज वो कथा कर रहे थे, ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। तो सब लोग भाई बलराम जी के आने पर खड़े हुए, पर कथा बांचने वाला होता है वो उसके खड़े होने का कायदा नहीं होता, क्योंकि वो यदि किसी के आने पर खड़ा होगा तो कथा का अपमान होगा। कथा करने वाला यदि अपना पुत्र भी है, पंडित जी का पुत्र कथा करता और पंडित जी वहां चले जाए तो भी कथा करते समय में पुत्र खड़ा नहीं होगा, और जो ही कथा समाप्त हो जाए त्यों ही व्यास आसन से नीचे उतरकर भरी सभा में पिता को प्रणाम करें। ऐसे यदि गुरु है वो यदि शिष्य के कथा कहने पर पहुंचता है तो शिष्य है वो उस समय तो बैठा रहेगा, परंतु कथा समाप्त करने पर भरी सभा में गुरु को दंडवत प्रणाम करेगा नम्रता से। ऐसे नहीं कि लोग मुझे देखेंगे, इतने लोग तो मेरा आदर करते हैं, मैं यदि इनका आदर करूंगा तो लोग सोचेंगे अरे ये बड़े हैं, हमको ये कथा सुनाने वाले तो छोटे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ऐसा भाव आने वाला, भाव लाने वाला व्यक्ति छोटा हो गया वो, चाहे लोग समझो चाहे न समझो। बड़ा जहरीला स्वरूप होता है ये। शास्त्र में ठीक कहा है, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। ये जो सम्मान और आदर होता है ये बड़ा भयंकर जहर है, इसको पचाना बड़ा मुश्किल है। आप लोग देखते होंगे अब तो क्या होता है, जैसे भिलावा की दवाई बनती है, कुचेला की दवाई बनती है, जहर है ये, भिलावा है, कुचेला है, धतूरा है, उसमें भी जहर होता है। पर डॉक्टर वैद्य लोग क्या करते हैं, उसको पहले भिलावा को शुद्ध करते हैं, कुचेला को शुद्ध करते हैं, और धतूरा वगैरह इसको खूब ओटा पटा करके इसका जहर अंश निकालते हैं, उसके बाद उसको दवाई में लेते हैं, सीधा देव तो आदमी मर जाए। ऐसी संख्या है, संख्या संख्या इतना सा ले लो मर जाएगा आदमी। हमारे संत मर गए थे, गलती से ले लिया। उस संख्ये को शुद्ध करना पड़ता है, फिर उसको किसी दवाई में मिलाया जाता है उतनी मात्रा में, तब वो गुण करता है। तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये सम्मान है, आदर है, मान है, बड़ाई है, ये ऐसा एक बिना छाना हुआ, बिना शुद्ध किया हुआ जहर है, इसको जो पी लेता है भाई बड़ा मुश्किल काम है। अच्छे अच्छे आदमी फिसल जाते हैं इस अवस्था में। धन से फिर भी बच सकता है, और बताया कि स्त्री से भी बच सकता है, पर सम्मान से बचना बहुत मुश्किल बताया है। और फिर लोगों के बीच में हम किसी को सम्मान दे देंगे तो भाई हम छोटे हो जाएंगे, ये तो हमसे नहीं होगा। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाला उस जहर को पचा नहीं सकेगा। लोगों के बीच में तो दूसरों को सम्मान देता है, वो व्यक्ति सम्मान के जहर को पचा सकता है, वो सम्मान के जहर से मर नहीं सकता। वो तो हमारे बलराम जी महाराज वहां पहुंच गए, देखा कि भाई खड़ा नहीं हुआ ये रोमहर्षण जी हमारे आने पर, तो उन्होंने एक तिनका लिया, तिनका लेके यूं फेंका, बेचारे रोमहर्षण जी खत्म हो गए, मर गए वो। ऋषियों ने हल्ला किया कि महाराज ये क्या किया आपने, कि ये अपने आसन से खड़ा क्यों नहीं हुआ। कहने लगे इनकी गलती थोड़ा ही है, इनको इस आसन पर हमने बैठाया है, और इस आसन पर बैठा करके आप जो इस तरह का अपमान किए हैं आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। देखो ऊंचे आसन पर बैठाना और फिर उसका अपमान करना, फिर उसका अपमान करना, ये अपमान करने वाले के लिए ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ये पंच उग्र पाप में एक पाप आता है, ये आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। कैसे ऋषि मुनि स्पष्टवादी थे, हो साफ कहा, चाहे बलराम जी हो और चाहे कोई हो, आपकी गलती है। तो बलराम जी की महानता देखिए, बलराम जी ने कहा कि ओहो गलती हो गई मेरे मुझसे। देखो संसार में जिसको थोड़ा सा भी कुछ मान मिला हुआ हो या कुछ थोड़ा बड़ा बड़प्पन मिला हुआ हो, वो सहसा कभी भी अपनी गलती मान नहीं सकता है। पर हमारे बलराम जी तत्काल मान गए गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, मैं क्या करूं, क्षमा चाहता हूं, तो ठीक है मैं अभी इनको वापस जीवित कर देता हूं, मेरे पास तो जिलाने की शक्ति है ही, अभी जीवित कर देता हूं। जब देखो बलराम जी ने अपनी गलती मानी, जिस सभा में उन्होंने अपमान किया उसी सभा में उन्होंने अपनी गलती मानी, लोकानुग्रह काम्य। स्वयं बलराम जी महाराज बोलते हैं कि मैं सब लोगों पर एक अनुग्रह करने की इच्छा से मैं क्षमा याचना करता हूँ और इनको वापस जीवन प्रदान करता हूँ और जीवन प्रदान करके दीर्घ आयु प्रदान करता हूँ और इनमें बड़ा इंद्रिय बल और शरीर बल बुद्धि बल सब बल प्रदान करता हूँ। ऋषियों ने कहा बस महाराज हो गया, आपने जो इस प्रकार से गलती के लिए गलती मान ली ना, बस हो गया काम। गलती को गलती मानने वाले होते कहाँ हैं बलराम जी महाराज? गलती करेंगे लेकिन उसको टेढ़े मेढ़े ढंग से निर्दोषता साबित करेंगे, क्या फायदा उससे? आपने कितने बेबाक कहा है, बिना किसी रुकावट के कहा कि हमसे गलती हो गई, तो ये तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। अस्त्रस्य, अब देखो आपके मारने के जो अस्त्र प्रयोग में आया उसकी भी रक्षा करनी है और हमारे इस कथा भाग की भी रक्षा करनी है। ये हमारा अनुष्ठान चल रहा था, हम बैठे यहाँ कथा सुनते थे, पुराण सुनते थे, तो पुराण सुनते थे तो इसमें जो है ये क्रम भी चालू रहना चाहिए। तो कहा कि अब आप बताओ क्या करें, तो फिर अंत में ये निर्णय हुआ कि रोम हर्षण जी का जो बेटा है उसको वैसा का वैसा ज्ञान दे दीजिए, उसको दीर्घायु दे दीजिए, उसको सत्व माने इंद्रिय बल बुद्धि बल वगैरह सब प्रदान कर दीजिए। कहा अच्छी बात है। बलराम जी को संतोष नहीं हुआ कि मैंने मेरी गलती की है, अभी उसका मैंने ठीक प्रायश्चित नहीं किया, संतोष नहीं हुआ बलराम जी को। बलराम जी ने फिर कहा कि और मुझसे कुछ काम कराओ आप। बेचारे रोम हर्षण जी को यही मैंने मार दिया, कोई और काम करवाओ। कहा कि इलवल का बेटा बलवल बहुत उपद्रव करता है। ठीक है, बलराम जी तो तीर्थ यात्रा में निकले थे बेचारे, पर तीर्थ यात्रा में जाते हैं तब क्या करते हैं? देखो लोग यूं जाते हैं तीर्थ यात्रा में, घरों में घूमते हैं वैसे। तीर्थ यात्रा मटर गस्ती के लिए नहीं होती, तीर्थ यात्रा जाते हो तो वहां सहिष्णुता होनी चाहिए, रहने की खाने की पीने की जैसी सुविधा अपने घरों में मिलती है वही सुविधा हम वहां चाहेंगे। ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत तपस्या भी होनी चाहिए, थोड़ी असुविधा भी भोगनी चाहिए। तीर्थों में जाते हो भाई, वो तपस्या होती है। अपने जीवन में जो जीवन यापन में कमी का अनुभव हो तो वो तपस्या होती है। तो बलराम जी महाराज खूब तीर्थों में गए, 12 मास तक वो तीर्थों में घूम घाम करके और फिर वापिस ये यहीं आ गए नैमिषारण्य में। यहां आकर के फिर उन्होंने यज्ञ किया, उनको संतोष नहीं हुआ कि मेरे से गलती हो गई। बड़ा पुरुष वो होता है भाई, नवे सो भारी हो, तराजू में जो भारी होता है वो नवता है, हल्का होता है ऊपर हो जाता है। बलराम जी महाराज को बहुत दुख हुआ कि अरे गलती हो गई जीवन में। ये बलराम जी से थोड़ी कोई गलती है, अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि गलती हो जाए तो ऐसे अपने अंदर पश्चाताप करो और वो गलती दोबारा ना हो, ऐसा ध्यान रखो। इसलिए बलराम जी ने लीला की है। और बलराम जी को क्या गलती हो, साक्षात भगवान के अवतार थे। अवृत स्नान किया और नैमिषारण्य में बहुत रह रुआ करके फिर वे वापिस द्वारिका में आ गए। राजा ने कहा महाराज ये मार धाड़ काट पाट खूब लीला सुनाई हमको, तो महाराज उस मधुर लीला में बड़ा आनंद आता है जहां भगवान भक्त से प्रेम करते हो महाराज, वो चीज अच्छी लगती है। हमारे हृदय में उठने वाली जो कामना है उनको बींधने वाली जो भगवान की कथा है वो बहुत प्यारी लगती है। वाणी वही पवित्र होती है जिससे भगवान का गुणगान गाया जाए, हाथ वही पवित्र है जिससे भगवान के लिए कर्म किया जाए, और हमारे कर्ण तभी पवित्र होते हैं जो सब प्राणियों में विराजमान भगवान की सत्कथा को सुनते हों। ये सिर कब अच्छा लगता है, अकड़ाई से ऊंचा होता अच्छा नहीं लगता, नरमाई से झुकता हुआ अच्छा लगता है, माँ बाप के चरणों में झुका हुआ सिर बहुत अच्छा लगता है। माँ के कैसे प्रणाम करते हो कि माँ का चरण का जो अंगूठा है उस अंगूठे को यहाँ इस भाल पर लगाया जाए, माने मानसिक रूप से उसका ये तिलक किया जाए माँ के चरण के अंगूठे का, तब वो माँ के प्रति प्रणाम होता है। माँ जो ये आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद से उस माँ के जो गुण है वो सब गुण पुत्र में उतरते हैं। पिता आशीर्वाद देते हैं उनका गुण उतरता है, दादा है, दादी है, बड़े भाई है, भौजाई है, ये आशीर्वाद देते हैं। यदि प्रणाम करो और आशीर्वाद के लिए हाथ न उठे, समझो कि वो हाथ पापों से बंधे हुए हैं, उठे नहीं वो। परंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे देखो कोई आपको राम महाराज बोलता है, राम राम बोलता है, आप वापस नहीं बोलते हो, पता नहीं वो अलग चीज है, आपको पता नहीं वो अलग चीज है, पता है कि वो हमको राम महाराज बोलता है, राम राम बोलता है, जय सियाराम बोलता है, और भी जो संबोधन भगवान के नाम पूर्वक जो है बोलते हैं, वापिस नहीं बोलते हैं तो गो हत्या का पाप लगता है। कोई वापिस नहीं बोलता तो गो हत्या का पाप लगता है, उसका वापिस सम्मान करना चाहिए। उसने भगवान का नाम लेके आपका सम्मान किया, भगवान का सम्मान किया, आपका भी कर्तव्य होता है। सिर की शोभा तभी है जब भगवान के चरणों में, बड़े माता पिता के चरणों में, सत्पुरुषों के चरणों में इसको रखा जाए। और नेत्र की शोभा तभी है जब भगवान के श्री मूर्ति का दर्शन किया जाए और महापुरुषों के दर्शन किए जाए, बड़े अपने घर में बड़े बूढ़े उनके दर्शन किए जाए, गांव में भी कोई बड़ी उम्र की माँ हो, बड़ी उम्र के कोई सज्जन हो, उनके भी दर्शन का पुण्य मिलता है। भाई ये 100 वर्ष के है, 90 वर्ष की बूढ़ी माँ है, उनके दर्शन करने चाहिए। परीक्षित ने जब ये बात कही कि महाराज भगवान की कोई प्रेम लीला सुनाओ, तो देखो जैसे ब्राह्मी लीला सुना रहे थे ना, उस समय में सुखदेव जी महाराज कैसे भाव में डूब गए थे, ऐसे ही हमारे सुखदेव जी महाराज अब फिर यहां कथा में डूब जाते हैं, कई देर तक बोला नहीं जाता उनसे। वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत, अब निमग्न हृदय हो गए, डूब गए। कभी कभी जो है कथावाचक यदि कथा के अंदर डूबता है, बोल नहीं सकता है, वो असली कथा है। वो सुनने वाला कथा सुनते सुनते ऐसा विभोर हो जाए, उसको पता ही नहीं चले कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, कुछ पता ही नहीं चले, विभोर हो जाए उस कथा के अंदर ही। वही वो है असली कथा सुननी। तो हमारे सुखदेव जी महाराज उसमें डूब गए, डूब करके कहने लगे, सुनो भाई सुनो, एक बहुत बढ़िया कथा सुनाता हूं। श्री कृष्ण के परम मित्र थे, परम ब्राह्मण, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, और ऐसे ब्राह्मण की ब्रह्मवित्तम है, जितने ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, उनमें सबसे ऊंचे दर्जे के वो ब्राह्मण थे, सबसे ऊंचे दर्जे के, संसार के विषयों से परम वैराग्यवान थे, प्रसन्न मन से रहते थे, जो मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए और जितना मिल जाए, जो मिले, जहां मिले, जब मिले और जितना मिले और जैसा मिले, उसमें पूर्ण संतुष्ट रहते थे, पूर्ण संतुष्ट। जो मिले, जहां मिले, जैसा मिले और जब मिले, उसमें संतुष्ट हो जाते। ऐसी उनकी पत्नी थी, बिचारी मेले कुचेले कपड़े पहनती थी, कभी कभी उनको कभी कोई दे गया सो दे गया, कोई आटा दे गया तो कुछ बना लिया, कोई नहीं दिया तो बिचारे उपवास ही करते थे। परंतु किसी से याचना करना मांगना कोई उनके मन में ही नहीं आए, मन में ही नहीं आई कि याचना करें। वो स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, पतिव्रता स्त्री होती वो कभी गरीब नहीं होती है, क्योंकि पति उसका सबसे बड़ा धन होता है और खूब रुपया पैसा खूब है लेकिन पातिव्रत्य नहीं है तो उसके जैसा कोई, उसके जैसी कोई हीन, उसके जैसी कोई जो है गरीब स्त्री नहीं है। पातिव्रत्य नहीं तुम्हारे में। हमारी इस ब्राह्मण की जो पत्नी थी जो हमारे लिए माता के समान है वो बिचारी बड़ी पतिव्रता। एक दिन उसने बड़े म्लान मुख से क्लांत होकर दुखी होकर अपने पतिदेव से उसने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप हमको बार बार बोलते रहते हो कि ये जो द्वारिकाधीश है ये हमारे परम मित्र रहे हैं, ये साक्षात लक्ष्मी के पति है, ये बैकुंठ में रहने वाले यहाँ लीला करने के लिए आए हैं, हम सब साथ साथ पढ़ते थे, ऐसा आपने हमको बहुत बार कहा है, ऐसा करो ना आप एक बार अपने मित्र से मिल तो आओ, देखो हम लोग बहुत कष्ट से दिन निकाल रहे हैं। और जब उनको ये आप जाकर निवेदन करोगे कि मित्र क्या करूं, मेरा घर का खर्चा भी नहीं चलता है, बहुत गरीब हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं क्योंकि मैंने आपके वचनों पर विश्वास किया है। अब वो विष्णु कैसे वो तो आप जाने, लेकिन आपने जो मुझे सुनाया है मैं आप पर आपके वचनों पर विश्वास करती हूं और आपके वचनों को केवल याद ही दिला रही हूं, वो आपको बहुत धन देंगे, आपकी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और अभी वो द्वारिका में बैठे हुए, आप जाकर मिल आइए। बहुत बार कहा, कई बार तो वो ब्राह्मण मुस्कुरा करके रह जाते हैं, कई बार कहा देखो ब्राह्मणी, कृष्ण से मिलना तो अच्छी चीज है पर उसके पास इस इच्छा से जाऊं कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए नहीं है, जाने का मन नहीं करता। अच्छा बाबा आप जाना, आप कुछ मत मांगना, कुछ मत मांगना, आप दर्शन करने के लिए तो जा सकते हो। अरे बहुत अच्छी बात कही ब्राह्मणी, दर्शन करने के लिए जाने में क्या बड़ी बात है, जरूर जाएंगे, पर करें क्या, बड़े आदमी के पास जाओ तो खाली हाथ जाना बड़े आदमी का अपमान करना है और अपने तो भाई खाली हाथ, क्या पेट ही खाली पड़ा है, तो हाथ भी खाली तो पेट भी खाली, कुछ है ही नहीं, क्या देवे उनको भेंट में, क्या देवे। आप जाने के लिए तैयार तो है ना? अरे तैयार तो बाबा एक बार नहीं, 100 बार चला जाऊं उसके दर्शन के लिए, पर भेंट क्या दूंगा, वो तो अभी व्यवस्था कर देती हूं मैं। अब देखो खुद भूखी है, पति भूखी है, परंतु हमारे पति के जो परम मित्र हैं उनका कायदा है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए वो पास पड़ोस में जाकर के और 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आती है और एक मेले कुचेले कपड़े में बांध देती है, लो महाराज पंडित जी ले जाओ। हाँ वो मेला कुचेला कपड़ा मसौता ही समझो, बदबू आए उस कपड़े में, बांध दिया ब्राह्मणी ने, उस पोटली को लेकर के रवाना हो गए। धीरे धीरे लकड़ी के सहारे चलते 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 जब वे भगवान के महल के उधर आसपास पहुंचे तो खूब महल दिखाई दिए। वहां बाहर एक सज्जन थे पहरेदार, पूछा कि द्वारिकाधीश का स्थान कहाँ है? ये सब द्वारिकाधीश के स्थान है, इतना लंबा चौड़ा, वो खुद कहाँ मिलेंगे, ये है ना कहीं चले जाओ आप कहीं मिल जाएंगे। तो वो किसी एक महल में प्रवेश किए, धीरे धीरे बेचारे बड़े शर्माते शर्माते आ रहे थे। एक पिरोल पार करी, दूसरी पिरोल पार करी और तीसरी पिरोल पार करी, उनको ऐसा आनंद आया ब्रह्मानंदम गतो यथा, जैसे ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है।
देखो यार, तीन पिरोल पार करी हो, तीन पिरोल पार करने का अर्थ है कि तीनों गुणों से जब ये जीव अतीत होता है तब उसको ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। तीन पिरोल से बाहर निकले तब, अर्थात तीन गुणों से अतीत हो जाए, ब्रह्मानंद में जैसे डूब जाए, ऐसे हमारे जो ब्राह्मण थे वो डूब गए, ब्राह्मण देवता गए थे, वो भगवान ने देख लिया उनको। भगवान अपने सभा भवन में बैठे हुए थे, तत्काल खड़े हो गए और बड़ी द्रुत गति से गए, गए जाकर के, और उस ब्राह्मण को जाते ही भगवान ने अपने भुजाओं में ले लिया, कस करके लिया, आइए आइए ब्राह्मण देवता, आइए आइए आइए। भगवान के प्रेम से आंसू आने लगे और उस ब्राह्मण के भी आसरे, तुमने हमको पहचान लिया, कृष्ण पहचान लिया। अब भगवान का बड़ा सुंदर पीताम्बर, बड़े अच्छे आभूषण, और एक अत्यंत दीन हीन गरीब ब्राह्मण उसके साथ भगवान जब मिल रहे हैं, तो भगवान के मुख कमल की शोभा है वो तो वही देखते ही बनती है, कैसी शोभा उनकी। अब भगवान ने उसका हाथ अपने हाथ, आओ आओ मित्र आओ, अरे आज आप आ गए, मेरा तो द्वारिका में रहना सफल हो गया, आओ मित्र आओ। अब मित्र के पेट में तो कुछ भी नहीं, भगवान तो दड़ा छट चले, और वो धीरे धीरे चले, भगवान को खींच के ले चलो आओ आओ अंदर ले जा करके ऊंचे आसन पर बैठाया है। अपनी पत्नी से कहा, परात लाओ, बर्तन लाओ, जल लेकर के आओ, इस ब्राह्मण के चरण धोने हैं। उसी समय में वहां परात लाएगी, जल लाए, ब्राह्मण के चरण धोए। अब वो पत्नी तो यूं जल उनेल रही है, भगवान उस चरण उनके चरण धो रहे हैं, और उसके बाद भगवान वो चरणों तक लेकर यूं चरणों तक सिर पर यूं हाथ फेरते हैं और कहा, देखो ये चरणों तक सबको देना, ये चरणों तक सबको देना। ऐसा चरणों तक न तो कभी पिया है और न भविष्य में कभी ऐसा चरणोदक, ब्राह्मण का चरणोदक मिलेगा, सबको दे। तो ले गई, और फिर उसके बाद भगवान ने उनकी आरती उतारी, चंदन वगैरह का लेप करके आरती उतारी। आरती उतारने के बाद भगवान उनके साथ चिपक करके बैठ के बात करने लगे, गोड़े पर हाथ रख करके चिपक करके। पास में उनकी रानी खड़ी थी, रानी नाक पर कपड़ा रुमाल दे, उसको बदबू आवे वहां, तो ब्राह्मण वो नहाया नहीं, धोया नहीं, मेला कुचेला, पसीने की दुर्गंध। देखो उनको तो आती है शरीर से दुर्गंध, और भगवान को आती है उनके मन से सुगंध। अरे इस ब्राह्मण में कैसी भक्ति है, कैसी निष्कामता है, कैसा मेरे साथ अपनापन है, भूखा है, प्यासा है, दुखी है, मुझसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुम खाने के लिए दो, पहनने के लिए दो, कि मेरी कोई व्यवस्था करो, मुझसे कुछ भी नहीं कहा। कितनी इसमें सुगंध है। भगवान चिपकते चिपकते जब उससे बातें करते हैं, तो उस समय उनकी पत्नियां सोचती है कि इसने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया है, ऐसा दीन हीन सड़े गले कपड़े पहना, मेले कुचेले कपड़े पहनने वाला, और देखो कैसे इसके साथ परिश्वक्त है, कैसे इससे मिल रहे हैं अग्रजो यथा, जैसे कोई इनका बड़ा भाई आया हुआ ऐसे मिल रहे हैं। अब भगवान पूछने लगे, अरे मित्र बताओ, मित्र मिलता है ना तो देखो मित्र उसको पीछे के दिन याद आते हैं, मित्र जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि भूतकाल को वर्तमान में बदलने वाला एक मित्र ही होता है, साथ साथ में रहेंगे। अब देखो तुम भी बूढ़े हो गए, हम भी खूब अवस्था ले लिए, लेकिन वो बचपना कब आता है, जो साथ ही मिलते हैं तो बचपना आता है। कैसे अपने लोग गुरुजनों के पास रहते थे, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं बताओ, शादी हुई कि नहीं, कुछ नहीं बोले, अरे तुम्हारी शादी हो तो क्या है, नहीं हो तो क्या है, तुम्हारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। न तुम्हारा शादी में मोह है और न शादी न होने में तुम्हारे कोई गम है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे। गुरुकुल में तो निवास करना देखो मित्र कितना अच्छा लगता था। ये हमारे गुरु महाराज होते हैं, वास्तव में ये अंधकार से परे हमको बैठाते हैं। इन गुरुजनों का कभी ऋण उतर सकता है मित्र? मेरी दृष्टि में तो कभी नहीं उतर सकता, क्योंकि वो गुरुजन कितने भीतर के एक प्रयास से शिष्य का अंधकार दूर करते हैं, कैसा उनके मन में भाव होता है। इसलिए मित्र न तो मैं यज्ञ से प्रसन्न होता हूं, न मैं तपस्या से प्रसन्न होता हूं, न मैं कोई गृहस्थ के और कर्मों से प्रसन्न होता हूं, मैं जितना गुरु शुश्रूषा से प्रसन्न होता हूं उतना मैं और किसी से प्रसन्न नहीं होता। अरे देखो गुरु जी की कृपा अपनी, एक दिन अपने संविधा लेने गए थे, कैसी जोर से बारिश हुई, सारी जगह जल ही जल भर गया, कोई रास्ता दिखे ही नहीं, और इधर सूर्य भगवान अस्ताचल को प्राप्त हो गए, तो अपने लोग एक रात पेड़ पर चढ़ गए, वहां बैठ गए। गुरु जी को रात भर नींद नहीं आई, गुरु जी रात को ही चिल्लाने लगे, बेटा तुम कहां हो, बेटा तुम कहां हो। जब तक अपने लोगों ने कोई वापिस आवाज नहीं की तब तक गुरुजी का हृदय एकदम विवल हो गया। और उसके बाद जब अपने ने लोगों ने कहा कि गुरुदेव हम बड़े सुरक्षित हैं, हमारे लिए आप भयभीत मत होइए, हम इस वर्षा के जल से जब ये कम हो जाएगा तो उसके बाद मार्ग देखकर अपने आप आ जाएंगे, आप हमारे लिए अधीर मत होइए। तब गुरुजी को थोड़ा धैर्य बना और फिर जो है बरसात कम हो गई, तब अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी के जाकर चरणों में प्रणाम किया, तो देखो गुरुजी के आंसू आंखों से निकल रहे थे और अपने सिर के ऊपर वो आंसू गिर रहे थे, और गुरुजी की वाणी निकल रही थी कि बेटा तुमने हमारे कार्य करने के लिए अपने शरीर की परवाह नहीं की, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे, जितनी हमारे पास विद्या है सब विद्या तुमको केवल एक गुरु शुश्रूषा से गुरु भक्ति से तुमको मिल जाएगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। और ये गुरुजनों की कृपा है कि जिस कारण से आज हमको उनका दिया हुआ प्रसाद हमारे काम आ रहा है। अब वो बोले, ब्राह्मण आए थे भगवान के मित्र, वो बोले। अब आप लोग सोचते होंगे कि सुदामा नाम क्यों नहीं बोल देते, बोले कैसे भाई, हमारे हाथ की बात थोड़ी है, सुखदेव जी बोले तो बोले। सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया सुदामा का, तो भाई हमारी क्या औकात है कि हम सुदामा नाम रख दें। इसलिए सुखदेव जी महाराज नहीं बोले तो कैसे बोले। तो वो ब्राह्मण बोलने लगे किम अस्माभिनिर्मितम देव देव जगत गुरु, हे जगत के स्वामी, हे देवादि देव, आपने गुरुकुल में निवास किया, हम लोगों के साथ आप रहे, ये केवल आपकी लीला मात्र है और कुछ नहीं है हमारा, सारे शास्त्र आपके अंदर से ही निकले हैं, सारे वेद आप ही से पैदा हुए हैं, फिर भी आप गुरुकुल में निवास किए हैं, गुरुकुल में निवास करके आपने जो एक आदर्श स्थापित किया है ये केवल आपकी लीला मात्र है, आप तो सत्य काम हो महाराज, गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको कुछ मिले ऐसा थोड़ा ही है, आपको तो आपका तो कामना सत्य होती है, फिर भी आपने गुरुजनों का आदर दिया है दुनिया को सिखाने के लिए कि अपने गुरुजी का आदर करो। अपने गुरु यदि उसको फटकारते हैं, बेकसूर फटकारते हैं, तो चुप रहकर उसको स्वीकार करो, कसूर पर तो फटकारे तो बात ही अच्छी है, बेकसूर फटकारे तो भी करो। लोग कहते हैं कि हमारी शिकायत मत करो जाकर गुरुजनों से, अरे शिकायत करना अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमारी शिकायत होगी तो गुरुदेव को पता चलेगा तो वो हमारी गलती को दूर करेंगे। नहीं नहीं हमारी शिकायत मत करना, शिकायत मत करने का अर्थ है हमारा दोष हमारे में रहने देना, कोई फायदा नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसके बाद भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि देखो ब्राह्मण देवता, आप किससे मिलने आए हो? एक राजा से और एक मित्र से मिलने आए हो। हमारे यहाँ खाली हाथ कोई नहीं आता, बताओ तुम क्या लेकर के आए हो? जो भी लाए हो सो दे दो मुझे, क्योंकि मैं वस्तु को नहीं देखता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसा का ऐसा गीता जी का श्लोक है। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपनीतम मश्नामी प्रयतात्मन है। एक मात्रा तक का फर्क नहीं है, ऐसा कैसा गीता जी का श्लोक। कहते पत्र पुष्प फल जल जो मुझे भक्ति से देता है तो मैं भक्ति से स्वीकार करता हूँ। अर्थात पत्र पुष्प फल तो मंदिर के अंदर है जैसे ही पड़े रहेंगे। तुमने जो भक्ति से अर्पित किया है, मैंने उस भक्ति से स्वीकार किया है। वस्तु को स्वीकार मैं करूं नहीं करूं कोई बात नहीं। इसलिए लोग जाकर कहीं अचंभा करते हैं, अरे हमने ये भगवान के अर्पित कर दिया, हे भगवान ये आप भोग लगाओ, तो फिर भगवान उसमें से कम तो करते नहीं है, फिर काय का भोग लगा? अरे कम करने का अर्थ ये नहीं कि भगवान इसको खाए हैं, इसके माध्यम से आपने भगवान को अपना प्रेम दिया तो इसके माध्यम से भगवान ने आपका प्रेम लिया। वहां प्रेम देना होता है और प्रेम लेना होता है। भगवान के पास कोई वस्तु की कमी थोड़ी, जो वस्तु खाएंगे भगवान। वस्तु की कमी तो भाई अपने लोगों में होती है, जो अपने को रोटी देर खा ली। ऐसे ही भगवान की अटकड़ लगाई, भगवान को ऐसे भी खा लेना चाहिए। भगवान भूखे हो तब खावे ना, जिस चीज के भूखे वो खाते हैं, प्रेम के भूखे हैं भगवान। आप प्रेम से वस्तु दे हो तो भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं। इसलिए देखो मंदिर में आप जो चीज चढ़ाते हो तो मंदिर के जो पुजारी लोग होते हैं उसमें से प्रसाद आपको देते हैं, अब आप ले जाओ। वो आप देखो दुकानदार से खरीदते थे तो और ढंग से खरीदते थे, ये लाना ये नारियल दे, नारियल दे, नारियल लिया थैले में रखा, और वही जब भगवान के अर्पित होता आप यूं ले लाओ लाओ। वस्तु की महिमा होती तो आप दुकानदार से भी उसी ढंग से लेते, वैसे नहीं लेते, यूं हाथ कर आदर से लाओ लाओ लेते हो। ये भक्ति से उपहृत वस्तु को भगवान भक्ति से ही स्वीकार करते हैं। अब ब्राह्मण देखा गया मैं क्या देऊं इनको, भक्ति मेरे पास है नहीं। एक विचित्र बात है, भक्त को भक्ति का घमंड नहीं होता, वही भक्त होता है। हम लोगों को तो संसार का धन मिल जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, मान मिल जाए तो घमंड होता है, और भक्तों को भक्ति मिलती है घमंड नहीं होता। अरे भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या लज्जित होने लगे। भगवान ने शर्त रख दी, पत्र पुष्प फल जल जो मुझे भक्ति से देता है तो मैं भक्ति से स्वीकार करता हूँ। तो अब लज्जा आ गई उनको, भाई मेरे पास तो भक्ति है नहीं, इसलिए लज्जित हो गए। वो ब्रीडित माने लज्जित हो गए। ठीक है जल फल से आप प्रसन्न होने वाले हैं तो मेरे पास चिड़वा है, चिड़वा दे देता, पर आप चिड़वे के भूखे नहीं है ना, आप तो भक्ति के भूखे हैं। भक्ति मेरे पास है नहीं तो बेचारे लज्जित हो गई, क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि अरे तुम्हारे पास नहीं मिलेगी तो किसके पास मिलेगी। भगवान ने झपट्टा मारा यूं तो लकड़ी के गांठ में बंधी हुई दे खींच लिया भगवान ने, खींच करके ना उसके यूं गांठ खोलने लगे, ऐसे बेचैन हो गए भगवान उसके खाए बिना। ये बेचैनी भक्ति की बेचैनी उठाया, एक 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 मुट्ठी ली चबाया भी नहीं भगवान, दूसरी मुट्ठी और फिर तीसरी मुंह तक लाए तो सत्यभामा जी ने हाथ पकड़ लिया। सत्यभामा जी ने कहा रहने दीजिए महाराज, एतावता अलम, ये बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया महाराज, इतना ही बहुत है, ये ले लोगे उसके बाद क्या होगा। देखो कोई तो कहते हैं रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, कोई कहते हैं सत्यभामा जी ने हाथ पकड़ा। असल में यहाँ सत्यभामा जी का हाथ पकड़ना सही है, क्यों? क्योंकि सत्यभामा जी है वो पृथ्वी का रूप है, और चिड़वा होता है ये तो चावल का ही बनता है, चावल पृथ्वी से पैदा हुआ है, इसलिए सत्यभामा जी रोके तो
रुकना रुकना ठीक भी है, रोक दिया तो जो है वो लेकर कह रही हूं रुक गए भगवान और कहा कि इस जन्म की और अगले इस लोक की परलोक की सारी संपत्ति आप दे दोगे, फिर और लोगों के लिए आप क्या करोगे। भगवान भूल गए, वो सब बात भूल गए। फिर कहा कि देखो जब भोजन का समय हो गया तो चलो ब्राह्मण देवता भोजन करने चलो। अब ब्राह्मण को साथ में बैठाया भगवान ने, साथ में बैठा करके भगवान भोजन करने लगे। अब देखो साथ में बैठाने का अर्थ ये नहीं है एक थाली में ही भोजन करना। आजकल लोग प्रेम का लक्षण मानते हैं कि एक थाली में भोजन करने से प्रेम होता है। एक थाली में तो, एक ठाण में तो ये गाय है भैंस है ये एक ठाण में भोजन करते हैं, पर शिंगड़ा मारते रहते हैं। एक ठाण में बैठने से भोजन थोड़ी होता है, प्रेम तो हृदय से होता है। तो भाई भगवान के भी थाली पुरसी, ब्राह्मण के भी थाली पुरसी। दूसरी बात है अपना ऊंटा भगवान कैसे जिमाते अपने ब्राह्मण को, वैसे भी दूसरी दृष्टि से भी ठीक नहीं। तो दोनों की अलग अलग थाली भोजन किया। अब वो भोजन किया बेचारा भोजन करता है तो मन में सोचता है कि आज तो मुझे मिल गया खाने के लिए, भूख तो मेरे कल लगेगी, कल की भूख का क्या करूं, ऐसा कितना अच्छा भोजन। बेचारे भोजन कर लिए, भूखे थे, जल पिया, भोजन किया और रात्रि भर आराम किया। रात्रि को आराम में भगवान ने अपने पलंग पर अपने साथ सुलाया, मित्र मेरे साथ सोओगे। भगवान को शायद ऐसा रात्रि में साथ सोने का आनंद जो इस ब्राह्मण के साथ मिला, ये उनको इस अवतार में कभी नहीं मिला होगा। आओ ऐसे भगवान देखो अपने भक्त को कैसा साथ रखते हैं। और वहां पर भगवान तो वही सो गए गहरी नींद में और वो बैठ गए वहां। उनके बाप दादों ने ऐसे पलंग नहीं देखे बिचारों के, क्या करें वो ऐसा बढ़िया पलंग, ऐसा महल, वो देखते रहे रात भर वहां बैठे रहे और कृष्ण का मुख देखते रहे कि ये मेरा मित्र है, मैं कैसा भाग्यशाली हूं, ये मेरा अपना है। वो कृष्ण को देख देख करके बहुत राजी हो रहे थे, आंखों से प्रेम से आंसू आ रहे थे उस ब्राह्मण के। रात भर नींद नहीं आई आनंद के कारण। और भगवान तो ऐसे सोए आज तक ऐसी नींद नहीं आई, ऐसे भगवान सोए। प्रातःकाल हुआ, भगवान ने कहा क्यों ब्राह्मण जो है आराम से नींद आई, कि देखो मुझे आराम बहुत मिला, बहुत आराम मिला मुझे, अच्छी बात है। तो अब स्नान वगैरह कर लो, क्या अब चलते हैं, नहीं स्नान तो करना पड़ेगा, स्नान किए बिना कैसे जाओगे। अब ब्राह्मण को बिचारे को लज्जा आएगी, मेरे पास दो कपड़ा नहीं, स्नान कैसे करूं। भगवान ने कहा देखो ये पीताम्बर है मेरा, तुम और हम दो थोड़ा ही है, जाओ स्नान कर लो, पीताम्बर पहन लेना और जब तुम्हारी धोती सूख जाए तो फिर तुम उसको पहन लेना। अब वो धोती वगैरह वह धोई, ऐसी साफ धोती हो गई उनकी। वो नहाए धोए, अपने नहा धोकर के संध्या की, जितने में भाई उनके तो वो धोती सूख गई। उन्होंने धोती वापिस पहन करके वो पीताम्बर भगवान को दिया। तब से उस दिन से भगवान ने उस पीताम्बर को अपने गले में धारण किया, ये मेरे भक्त का स्पर्श किया हुआ, ये मेरे भक्त के काम आया हुआ पीताम्बर है। भगवान उस पीताम्बर की पट्टी को यूं पट्टी बनाकर उसके गले में तब से धारण करने लगे। कहा कि महाराज बस अब मैं विदा होता हूं, देखो विदा तो होते हो लेकिन हमको कुछ देके जाओ, देखो आप देके जाओ, हमको लेना था वो हमने ले लिया, दो मुट्ठी चिवड़ा ले लिया हमने, अब आपको जो देना है सो आप दे जाओ, मैं क्या दे सकता हूं, आप आशीर्वाद दे सकते हो। ब्राह्मण के पास आशीर्वाद का भंडार खुला रहता है और ब्राह्मण का आशीर्वाद लगता भी है, आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, अच्छी बात है साहब। अब आई साहब रुक्मणी जी आई, आरती उतारी, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा पुत्रवती भव, बहु पुत्रवती भव, सदा सौभाग्य कांक्षिणी भव। हैं और खूब आशीर्वाद दिए। यशस्विनी भव, पतिव्रता भव, सद्गुणवती भव, खूब आशीर्वाद दिया। सदा सुखिनी भव, आशीर्वाद एक को दे दिया, दो को दे दिया, तीन को दे दिया। अब आवे वो देखो, आवे दो चंदन लगाए, और आवे जो अगरबत्ती करे तो अब धुएं से और चंदन से बिचारे वो तो कमजोर ब्राह्मण छींक आने लगी और नाक पूछे कभी क्या करे। एक आई, दो आई, चार आई, दस आई, दस पंद्रह देखो कुछ नहीं बोले। फिर जो है कह लगे, फिर आशीर्वाद जितने बोले ना वो खुश हो करके उन आशीर्वादों में कुछ कम करना चालू किया। भाई अखंड सौभाग्यवती भव, दो दो आशीर्वाद। तो और पत्नियों ने कहा कि पंडित जी महाराज हमसे पहले गई उनको तो आपने चार चार पांच पांच आशीर्वाद दिया, सदा सुखिनी भवैर, यशस्विनी भवैर, पतिव्रता भवैर, पुत्रवती भवैर, हमको तो महाराज आपने एक ही आशीर्वाद दिया, इतना भेद क्यों है। तो वही पंडित जी कहने लगे कि अब क्या करूं, बहुत देर से बोलते बोलते हमारा गला सूखने लग गया। तो कहा अच्छी बात है महाराज। फिर और करते करते 10-20-25-30 के बाद में क्या भाई, हम पतिव्रता भव है, एक ही आशीर्वाद, पतिव्रता भव है, पतिव्रता भव है। ऐसे करते करते 10-20 और निकल गए। तो फिर कहा भवे बोलने लगे। तो फिर कहा कि भाई महाराज वो उनको तो इतना आशीर्वाद दिया और हमको भवे भवे कि भाई और आशीर्वाद हमने मन से दे दिया, तुमको सुनाने के लिए हमने भवे बोल दिया, भावना हमारी वही है, अच्छी बात है। 20-30-50-100 का टोला निकल गया। फिर क्या ऐसे वो श्री इलाका अलग आशीर्वाद देने लगे। अब 10-20-100 में वो भी निकल गया टोला। ऐसे करके वो करे श्री लावे बिचारे। अब ब्राह्मण भोजन भी कल ही मिला इनको, तो अब ये भी दुखने लग गया। तो हाथ हिलाते हाथ भी 10-20-100 तक हाथ भी चला गया। माने 300-400 तक तो सब काम हाथ से इशारे से होता रहा। कृष्ण से कहा, कृष्ण अब कितना का आशीर्वाद है हमारा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो आशीर्वाद कुछ भी नहीं हुआ। 16108 है, हाथ जोड़ता हूँ, सबको एक साथ ही आशीर्वाद देता हूँ, मैं तो पूर नहीं सकता, इतनों को मैं कह नहीं सकता। भगवान बड़े खुश हो गए और भगवान उसको दूर तक विदा करने के लिए गए, भगवान वापिस आ गए। अब वो आगे जाकर जब थोड़ी बस्ती कम हो गई, जंगल आया, तो बैठ करके सोचने लगा, अरे कितने दयालु हैं भगवान, मैं गया मेरे से चिवड़ा भी तो ले लिया, कोई बात नहीं, कैसा खिलाया पिलाया कोई बात नहीं, और आशीर्वाद मेरे से लिया वो भी देखो इनका धर्म था, पर मुझे एक रुपया भी नहीं दिया, नारियल भी नहीं दिया, फल भी नहीं दिया, केला सेव भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया, यही भगवान की कृपा है। भगवान जानते हैं कि ये दरिद्री आदमी, इसका दरिद्री रहने में इसका भजन होगा, इसलिए भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे ये कम दिया है क्या कि बाहुभ्याम परिरम बीता है, यूं मुझे भुजाओं में ले लिया। ये भगवान का परिश्वंग, कितनी अमूल्य चीज मुझे मिल गई, असली लक्ष्मी तो मुझे मिल गई और बाकी चीज दिया। और उनकी पत्नी मेरे हवा करने लगे, बोलो अपने मन को ही समझा रहे कि तेरा कैसा भाग्य है। ओ भगवान के प्रेम की तरफ दृष्टि रखो मन, धन की तरफ दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। अरे संपूर्ण सिद्धियों का केंद्र है उनका चरण, उनके चरणों में चित लगाओ। ऐसे करके वो मस्त हो गया। हा भगवान कैसे करुणा करते हैं ना, तब गरीब आदमी को एक रात में धनी बना दे, खूब बढ़िया बरसात हो जाए तो लोगों के खेत हरे भरे हो जाए, तो भाई ये तो भगवान की कृपा है, वो कारुणिक है, वो बड़े दयालु है, इसलिए मुझे धन नहीं दिया कि धन देते ही जितना अंश धन में प्रेम हो जाएगा उतना मेरे में तो प्रेम कम हो ही जाएगा, इसलिए उन्होंने उनको धन नहीं दिया है। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे करते 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 वो अपने जगह पर मोहल्ले में आ गए। मोहल्ले में आए और देखा कि ओहो मेरी तो कुटिया तो यही थी भाई, ये देखो सामने तलैया है, ये इधर नीम का पेड़ वही है, ये वृक्ष भी पीपल का भी यही है,
ये मकान वही है, हमारी यही कहीं कुटिया थी, कहाँ गई कुटिया? वो बेचारे हक्के बक्के होकर यूं देख रहे हैं, कहाँ मैं गलत तो नहीं आ गया, आया तो सही हूँ, सब और सब वही मिलता है, पर ये मैं कहाँ आ गया, क्या बात है, इतनी बड़े बड़े चमकीले चमकीले ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतें कहाँ से आ गई? ऐसे सोच रहे हैं उतने में ही सैकड़ों स्त्रियों से गिरी हुई और सोने के आभूषणों से लदी हुई एक स्त्री आई। वो चले तो एकदम जो है आभूषणों की आवाज आए, छमक छमक आवाज आए। वो बेचारे यूं देख रहे, उनको क्या पता है कोई मेरी तरफ आ रहा है, सर आ रही है, कुछ पता नहीं। वो यूं खड़े खड़े बेचारे देखे, मेरा मकान, मेरी झोंपड़ी, उस गरीब की झोंपड़ी कहां गई? भाई झोंपड़ी तो गई, वो ब्राह्मणी भी तो नहीं दिख रही है। इतने में ही वही वो ब्राह्मणी आई, आकर के उनके चरणों को प्रणाम, कौन कौन है? काशित्वम, कौन हो तुम, कौन हो? क्या दासी अस्मि अहम। महाराज मैं दासी अस्मि अहम, मैं दासी हूं आपकी, दासी अस्मि अहम। आहो, अरे ये वस्त्र और ये आभूषण और इतनी सेविकाएं, क्या है ये? कि महाराज आप अंदर पधारी, अंदर कहां, कहां गई हमारी वो झोंपड़ी? ये महाराज आपकी झोंपड़ी है, ये झोंपड़ी है, आप चलिए अंदर पधारी। अब उस ब्राह्मण के आंखों में आंसू लग रहे, कहां मुझे पटक दिया भगवान ने। अब वो ऊंचे चढ़ करके महल में गए, देखा कि अरे कृष्ण का भी ऐसा महल नहीं है, ऐसा दिव्य महल मेरे लिए बना दिया। अब वो आंगन में बैठ करके सिर पर हाथ रख करके और बार बार रोते रोते भगवान से कहना, हे भगवान ये क्या दे दिया मुझे, मैं तो ये चाहता भी नहीं था। दरिद्रता कितनी अच्छी है, न किसी वस्तु में मोह होता है, न कोई कामना होती है और न कोई हमारे और दूसरा काम धंधा रहता है। अब इतनी दास दासियां हो गई, सारा काम धंधा ये करेंगी, घमंड हमको होगा कि हमारी दास दासियां हैं, धन का घमंड हो जाएगा, हे भगवान आपका भजन कैसे होगा? नूनम बतैत मम दुर्भगस्य शश्वत दरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभूते रवलोकतोन्यो नैवोपपद्येत्य यदुत्तमस्य। एक कृष्ण की कृपा कटाक्ष के बिना मेरे पास ऐसा ऐश्वर्य आ नहीं सकता, ये सब उसकी कृपा का प्रभाव है। तुम तो बदल की तरह से बिना सोचे समझे बरसते हो रे कृष्ण, ये क्या तुमने हमारे यहां संपदाओं की वर्षा कर दी? एक मुट्ठी चावल लिया और मेले कुचेले कपड़े में बंधी हुई मेरी भेंट ली, जिसके बदले में ये दिया, अब ये दे ही दिया है, बिना मांगे दिया है, तो अब मैं आपसे कुछ मांगता भी हूं? कृष्ण तुम सर्वव्यापी हो, मेरी मन की बात जानने वाले हो, तो मैं आपसे चीज मांगता हूं। हे कृष्ण, एक तो तुम्हारे साथ मेरी सदा अखंड मैत्री बनी रहे, तस्यैव मे सौहृदय सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। बार बार जन्म लेना पड़े तो भी आपके साथ मेरी मैत्री सख्यता और दास्य भाव यही मैं चाहता हूँ। और आपके जो प्रेमी पुरुष है, भक्तजन है, संत महापुरुष है, उनके साथ मेरा गठबंधन, उनके साथ प्रेम चाहता हूँ, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। महाराज धनियों को इसीलिए बिचारों को घमंड होता है, क्योंकि उनके पास जब धन आ गया तो उतना मन उतना दिल वो धन से दब गया, वो आपकी भक्ति कैसे करेगा? इसीलिए धनी लोग आपकी भक्ति नहीं कर सकते। हे महाराज ये संपदा दी, लेकिन इससे अनासक्ति दे देना, इससे निर्मोहता देना, और अनासक्ति निर्मोहता निर्ममता बिना सत्संग के नहीं आती है, इसलिए महाराज सत्संग तो बहुत जरूरी हो गया। ऐसे वो बार बार प्रार्थना करने लगे और वास्तव में ऐसा ही हुआ। इतनी बड़ी संपदा प्राप्त करने पर भी वो ब्राह्मण उसमें लिप्त नहीं हुए,
और रात दिन भगवान का ध्यान करते करते सारी जगत का बंधन छोड़ करके वो भगवान को प्राप्त हो गए। हे परीक्षित, इस कथा को जो प्रेम से सुनता है उसके सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं और भगवान में उसका भाव बन जाता है। एक बार की बात है परीक्षित, एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हो रहा था, उसमें ऐसा लगा कि जैसे कोई प्रलय होने वाला हो। तो उस समय भगवान जो है यहाँ कुरुक्षेत्र पधारे, सब जनता कुरुक्षेत्र आई, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र जाया करते हैं लोग, तो उस समय में कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र में सब लोग मिले, भगवान भी गए वहां पर, कुंती जी भी मिली वहां पर, पांडव लोग भी मिले वहां पर, ऋषि मुनि भी मिले, वसुदेव जी मिले, नंद बाबा भी मिली, गोपियां भी मिली, गोपियां मिली। अब देखो गोपियां जब से भगवान गए तब से आज पहली बार भगवान की और गोपियों की आपस में मुलाकात होती है, आपस में बातचीत होती है। गोपियां मिली तो गोपियों ने ऐसा घेर लिया, गोपियों से कुछ कहा नहीं गया, आंखें झरझर हो गई गोपियों की। तब उस समय भगवान बोले, ये गोपियों तुम्हें मेरी याद आती थी ना, अरे तुम तो मेरे विरह में दुबली हो गई, पतली हो गई। कोई बात नहीं, देखो तुम्हारा और हमारा वियोग तो हो नहीं सकता है। एक बात है, ये जो संयोग और वियोग होता है ये सब काल की देन होती है गोपियों। देखो कैसे काल ने पहले मैं जिस दिन जन्मा उस दिन तुम लोगों के बीच में बैठा दिया, और उसके बाद देखो कितना मन होते हुए भी तुम और हम आपस में मिल नहीं सके। भले ही मत मिलो परंतु तुमने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम के द्वारा, चित्त वृत्ति के द्वारा तो बराबर आपका और हमारा मिलना होता ही रहता था ना। बस चित्त वृत्ति से मिलना मिलना ही होता है, कोई शरीर और देश काल से मिलना मिलना थोड़ी होता है, चित्त से मिलना असली मिलना होता है। गोपियों ने कहा, हे प्रभु आपके चरणों को तो योगेश्वर अपने हृदय में धारण करते हैं, आप हमारे घर गृहस्थ में पार लगाने के लिए अपने चरणों को नौका बना दीजिए। ऐसी भगवान ने बातें की। फिर ऋषि मुनि सब मिले, सबसे भगवान प्रेम से मिले। द्रौपदी ने भगवान की प्रत्येक पत्नी से हालचाल पूछा कि तुम्हारी कैसे शादी हुई, तुम्हारे कैसे शादी हुई, सबने अपने हालचाल की बात बताई। और उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, वसुदेव जी ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। संतों ने कहा, वसुदेव जी आप यज्ञ क्यों करते हो? कि भाई हम द्वारिका के राजा हैं, इतना बड़ा धन है, वैभव है, जनता के कल्याण के लिए करते हैं। तो कहा आपने तो अपने गोद में श्री कृष्ण को खिलाया पिलाया है, आपको यज्ञ की क्या जरूरत है। ऐसे करके इनकी बातें होती रही। नारद जी ने कहा, देखो गांगम हित्वा यथा न्यांभस तत्रात्यो याति शुद्धये, सन्निकर्षो ही मर्त्या नाम अनादरण कारणम, ज्यादा पास में रहने से आदमी आदर नहीं करता है। गंगा जी के पास रहने वाले लोग भी तीर्थ यात्रा के लिए बाहर जाते हैं, अरे तुम गंगा जी में रहते हो, गंगा जी किनारे रहते हो, तुमको तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है, जाते क्यों? गंगा जी बराबर उनके पास है ना, इसलिए उसका आदर नहीं करते। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है फिर भी कोई बात नहीं। नारद जी ने कहा, देखो एक तो वित्तेषणा होती है, एक लोकेषणा होती है, एक पुत्रेषणा होती है, इन इष्णाओं के त्याग के लिए यज्ञ की जरूरत होती है। तुम यज्ञ कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। फिर यज्ञ करके और वसुदेव जी महाराज ने सबको जो है सत्कृत किया और फिर नंद बाबा को वहां से विदा किया। नंद जी और वसुदेव जी आपस में बहुत प्रेम से मिले थे। वसुदेव जी ने कहा, देखो नंद जी हमारे पास पहले राज्य नहीं था, धन नहीं था, तब आपस में अपने लोग कितने बार मिल लेते थे, और अब राज्य और धन हो गया ना, देखो अब मिलना ही नहीं होता है, क्योंकि धन के अंदर अंधा हुआ आदमी स्वजनानुत बंधन हुआ न पश्यति यया नदृक, अपने आत्मीय लोगों को भूल जाता है, कौन है क्या है भूल जाता है, धन में अंधा हुआ हम अंधे हो गए।
ऐसी आपस में खूब बातचीत हुई और सब अपने अपने स्थान पर चले गए। भगवान भी द्वारिका में आ गए। द्वारिका में आने पर अब जो है भगवान का जो इतना आदर कुरुक्षेत्र में हुआ था, वसुदेव को आश्चर्य हुआ, अरे ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है। भगवान प्रातःकाल चरण छूने के लिए गए पिताजी को, पिताजी ने कहा अरे कृष्ण तुम तो महान योगी हो, तुम बिजली के अंदर तेज तुम हो, जल के अंदर रस तुम हो, दिशाओं में अवकाश तुम हो, पृथ्वी के अंदर गंध तुम हो और इंद्रियों में ज्ञान शक्ति तुम हो। जो कुछ संसार में विलक्षणता दिखती है, जिस वस्तु में जो विलक्षणता है, वो विलक्षणता तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके मनुष्य को जो है सबसे पहला काम आपकी प्राप्ति का है, उसमें लग जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि पिताजी आप मुझे जैसा भगवान मानते हैं, ये भगवान का स्वरूप प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा रूप से देखा जा सकता है। आत्मा एक है स्वयं ज्योतिर नित्यो अन्यो निर्गुणो गुण ही। ये आत्मा नित्य है, निर्गुण है, स्वयं प्रकाश है। जैसे आपने मेरे विषय में कहा, ये मैं और आत्मा दो नहीं होते हैं। देवकी ने कहा देख बेटा, मैं तो कोई वसुदेव जी के समान ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, ज्यादा मैं तेरी स्तुति जानती नहीं हूँ। मैं इतनी बात जानती हूँ कि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए तुम आए हो और तुम दीन दुखियों का दुख दूर कर सकते हो, तो मेरे 6 बेटा जो तेरे बड़े भाई हैं, उनको कंस ने मार दिया था, एक बार मैं उनको अपनी गोद में खेलते हुए देखना चाहती हूँ। और हमने सुना है कि तुमने मरे हुए गुरुपुत्र को लाकर दिया है, तो भाई तुम भी हमारे मारे हुए 6 पुत्रों को लाकर दे दीजिए। मरे हुए गुरुपुत्र को दिया तो मेरे मारे हुए 6 पुत्रों को तो लौटा दो, एक बार मेरी गोद में खेल ले, फिर कोई बात नहीं। भगवान ने कहा जो आज्ञा माता। भगवान सीधे सुतल में जाकर के बलि राजा से कहे राजन वो 6 है ना पुत्र कंस ने मारे थे। हाँ महाराज वो है ना। कि महाराज ये कौन थे। देखो बलि महाराज, ये मरीचि के 6 बेटा थे जो मरीचि के ऊर्णा से पैदा हुए थे। तो एक बार ब्रह्मा जी ने एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी को सरस्वती के पीछे दौड़ते हुए देख करके हंसी उड़ाई। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मैं सरस्वती के पीछे दौड़ता हूँ, वो कोई स्त्री के पीछे दौड़ना थोड़ी, तो वह हंसी उड़ाते हो। उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुमको ज्ञान ही नहीं, तुम केवल बाहर की चीज देखते हो। गंगा जी के किनारे एक महात्मा जी थे, छोटी सी कथा और सुना देते हैं। वो महात्मा जी थे, वो एक टूटी फूटी कुटिया में रहते थे। उन महात्मा जी के पास से एक स्त्री पुरुष दोनों निकले, बड़ी ठहाका मार मार के हंस रहे थे और उनके हाथ में बोतल थी, पी रहे थे। महात्मा जी को बहुत बुरा लगा कि क्या जमाना आ गया, अरे ऐसे ठहाका मारते ही। उन्होंने देखा कोई प्रेमी प्रेमिका है और उन्होंने देखा कि मदिरा पी रहे हैं, ठहाका मारते हैं, होश नहीं है। महात्मा जी थोड़े उनके पीछे पीछे गए, आगे जाकर महात्मा जी बैठ गए। इतने भी वो आ गए, गए रुको बोलो क्या बात है, आप ऐसे जंगल में ठाका कैसे मारते हो। क्या बाबा जी क्या बताएं, ये मेरी बेटी बहुत दिनों बाद ससुराल से आई है और ये कहती है कि मुझे कभी आपने गंगा जी के किनारे अच्छे अच्छे हरे भरे गृह हमने हमको कभी दिखाए नहीं, तो बहुत दिनों में आई है, जब से शादी हुई तब से आई नहीं, इसका मनोविनोद माने इसका चित्त प्रसन्न हो इसलिए घुमाने के लिए लाया था, और मैंने देखा कि बच्ची है इसको प्यास लगेगी तो मैं गंगाजल की बोतल लेके आया। महात्मा जी रोने लग गए, अरे मैं भजन करता हूँ, मेरी दृष्टि अभी तक साफ नहीं हुई, मैं इनको क्या समझ रहा था, मैं इनको प्रेमी प्रेमिका समझ रहा था और मैं इनको मदिरा की बोतल वाला समझ रहा था। हाय हाय, जब तक मैंने ये पवित्र दृष्टि नहीं बनाई तो क्या भजन किया। ऐसे ही ब्रह्मा जी को देखकर देवता हंसे, तो ब्रह्मा जी ने उनको हिरण्यकश्यप का बेटा बना दिया और फिर ये देवकी के बेटा हो गए। अब मैं इनको एक बार देवकी की गोद में भेजना चाहता हूँ। ऐसा कहकर के भगवान उन पुत्रों को लेकर आए और छहों को ला करके और देवकी की गोद में रख दिया। छोटे छोटे बच्चा, देवकी ने अपना दूध पिलाया, कहा कि बेटा सारे संसार में छोटे बड़े बेटे का ऊठा किया हुआ दूध छोटे बेटा पिया करते हैं, पर तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम अपने छोटे भाई से ऊठा किया हुआ दूध आज तुम मेरे से पी रहे हो और भगवान कृष्ण का ऊठा किया हुआ दूध तुम पी रहे हो। बहुत उनका प्यार किया, स्नेह किया। और सच पूछा जाए तो परीक्षित उसके बाद नारायण के अंग स्पर्श से और उनके उच्छिष्ट दूध को पीने से वे छहों के छहों जो पुत्र थे वो भगवान के दिव्य धाम में चले गए। ऐसी ऐसी भगवान की विचित्र विचित्र कथाएं हैं। इन कथाओं को जो व्यक्ति सुनता है उसका वैकुंठ में स्थान रिजर्वड हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव।
सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। रास रासेश्वर भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय
आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निरमल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल
परमानंद सुधार
लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारी
सेवत सतत सकल सुख कारिणी
सुभ औषधि
बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले श्री